जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य। सब लोग बोलिए
हिंदी ना।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की नित्यानंद महाप्रभु की हरे कृष्ण महामंत्र की नवद्वीप मायापुर धाम की अंतरद्वीप धाम की हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का श्री श्री राधा गोविंद मंदिर गोविंद धाम निगड़ी में आप सबका स्वागत है। श्री भगवान का मंदिर जो है वो भगवान के उत्सवों को संपन्न करने के लिए बनाया जाता है। भगवान का संग प्राप्त हो इसलिए बनाया जाता है। भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो, भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए बनाया जाता है। और सबसे उत्कट जो उद्देश्य है वो ये है कि गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने अपने हृदय का भाव व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए मंदिर बनाया जाता है। मंदिर का उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं है, मंदिर में आकर भगवान की सेवा करनी है, भगवान नाम का उच्चारण करना है। और धीरे धीरे यहाँ पर आने वाले और रहने वाले भक्तों से इतना प्रेम स्नेह निर्माण करना है कि अपने हृदय की व्यथा और हृदय का आनंद दोनों यहाँ पर कहने जैसी स्थिति उत्पन्न करना, और फिर हृदय की बात का आदान प्रदान करना, हृदय के भाव का, ये हमारे इस्कॉन के मंदिरों का प्राथमिक उद्देश्य है। ऐसा परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा था, टेम्पल्स आर मेड टू एक्सप्रेस अवर हार्ट्स टू फेलो डिवोटीज। हरे कृष्णा। और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उन भगवान के सुंदर उत्सवों को संपन्न करना, क्योंकि उत्सव जो है वो हमारी परम संस्कृति है भारत देश की। प्राचीन काल से, हाँ, जब इस्कॉन भी नहीं था, ऐसे प्राचीन काल से भारत में उत्सव की परंपरा है। उत्सव का उद्देश्य क्या होता है कि उत्सव में सब लोग एकत्र आते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। उत्सव में भगवान नाम का कीर्तन होता है, उत्सव में भगवान की कथा होती है, लोग श्रवण करते हैं और भगवान नाम का कीर्तन करते हुए झूम झूम कर नृत्य करते हैं। एक भारतीय संस्कृति की विशेष महिमा है कि नृत्य के बिना उत्सव संपन्न नहीं होता है। अगर नृत्य नहीं है तो उत्सव अधूरा है। इसलिए हमारे वृंदावन धाम में और बाकी पूरे भारतवर्ष में जब भी उत्सव होता है तो लोग हमेशा नृत्य करते हैं। और विशेष बात यह है कि वृंदावन में सदैव नृत्य करने के लिए सब ब्रजवासी तैयार रहते हैं, एवर रेडी, पुरुष, बच्चे, स्त्री, स्त्रियां, सब लोग सदैव आतुर रहते हैं नृत्य करने के लिए, सदा प्रवृत्त रहते हैं, कभी उनको संकोच नहीं है। रास्ते में किधर भी, मुझे अभी पता है जब हम कामेवन में एक बार गए थे, कई बार कई जगह गए, लेकिन ऐसे औरतें वहाँ पर नदी किनारे अपने कपड़े धोते रहते हैं और हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर हम कहते हैं मैया कुछ रस्सिया सुना दो, तो मैया कपड़े छोड़ के तुरंत डांस करने लगती, तुरंत गाने और नाचने लगती। इसका अर्थ हुआ कि ये उनके जीवन का स्थायी भाव है, एवर रेडी टू डांस एंड सिंग, क्योंकि उनका जीवन सदैव उत्सवमय है, उनके लिए राधाष्टमी और होली की जरूरत नहीं है, सदैव उनका जीवन उत्सवमय है, सदैव ब्रजवास जो है वो उत्सवमय है। तो वैसे ही भाव मंदिर में निर्माण होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे मंदिर जो है वो वृंदावन से अलग नहीं है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। तो वृंदावन का जो साई भाव है यहाँ पर हमको अंगीकार करना जरूरी है, और वो है सदैव नृत्य और सदैव नाम गायन में उत्सुक रहना, और उसके पश्चात हरि कथा सुनना, हरि कथा कहना, बोधयंत परस्परम, कथयंतस्तु माम तुभ्यम, बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को, सभी लोगों को भगवान के विषय में आकृष्ट करना, भगवान के इल्लाओं का गुणगान करना, गुण गौरव करना, ये जीवन है। बाकी क्या जीवन है? बाकी जीवन में क्या है? दुख है, दर्द है, पीड़ा है, यातना है, कष्ट है, संघर्ष है, दर्द है, क्या नहीं है बताओ? किस समय नहीं है बताओ? लेकिन ये सबसे ऊपर उठने के लिए मंदिर है। आप कितने भी गहराइयों में अपने जीवन में संघर्षमय वातावरण में रह सकते हो, फिर भी मंदिर आते ही आपको मंदिर का वातावरण उससे पूर्णता से मुक्त कर देगा। केवल उससे मुक्त नहीं करेगा, तुरंत आनंद का अनुभव भी देगा, आनंद के लहरों में आपको झुलाएगा वो वातावरण। लोग केवल मंदिर में ना आकर घर में ही रोते रहते हैं और बोलते कहाँ है कोई, है हाय हाय ऐसे ही करते रहते हैं, उपाय नहीं करते हैं, रोते रहते हैं वाली बस। आइए मंदिर आइए ना, सुंदर वातावरण है, प्रवेश करते ही सकारात्मक लहरी लहरें हमारे हृदय को परिणाम देती है, हाँ तुरंत हृदय में उसका अनुभव होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। वो उस दिन शिवरात्रि थी तो मैं मंदिर गया था, राधा गोपीनाथ मंदिर में, और मुझे मेरा प्रवचन था तो मैं कुछ सोच के गया था मैं बोलूं, लेकिन जिस तरह से वातावरण था मंदिर में, सारे बाबुलनाथ के जो भक्त थे वो सारे गोपीनाथ मंदिर में आए थे, ऐसा वातावरण था कि ऐसा झूम उठा पूरा, सारे लोग नृत्य कर रहे थे, सारे शिव भक्त बाबुलनाथ से हमारे मंदिर में आकर, हमारे मंदिर के भक्त गुरु पूजा का नृत्य कर रहे थे, वो सब लोग मिलकर नृत्य कर रहे थे, ऐसा धुआंधार आनंद का वातावरण था। कोई दुख का वहां पर कोई लवलेश नहीं है, यू कांट फाइंड सॉरो, दवा के लिए भी और उधर दुख नहीं है। तो ये उत्सवमय वातावरण का अनुभव हमको मंदिर में होता है, और जहां मंदिर में भगवान की सेवा होती है प्रेम से, वहां पर हर दिन उत्सव है, हर दिन हरि नामोत्सव है। सुबह हम लोग उठते हैं, क्या करते हैं, स्नान करते हैं, तुरंत भगवान के नाम के लिए बैठ जाते हैं, वो हरि का आविर्भाव दिवस है, हरि नामोत्सव है, हरिनाम संकीर्तन उत्सव है, वो रोज का एवरी डे। आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि जीवन हमारा खाली हो गया, सुना सुना हो गया, उदास हो गया, कभी लगेगा नहीं आपको। अगर हम सब लोग उस भगवान नाम को उत्साह से, एकाग्रता से, प्रेम से, निष्ठा से लेते हैं, तो हमारा और आपका हर दिन उत्सव है। क्यों हम अपने आप को ऐसे भाग्य से वंचित रखते हैं, क्या कारण है उसका? क्योंकि दुख में डूबे रहने की हमें आदत हो गई है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, सब जगह दुखों का वर्णन करते हैं, कभी लोग कभी बनते इसलिए कि इतने दुखी होते हैं कि वो वीक हो जाते हैं, और वीक होने के बाद में कवि बन जाते हैं, वीक कवि। तो हमें उसमें नहीं, हमें कविता करनी है तो तुकाराम महाराज जैसे करनी है, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, ऐसे कविता करनी है। वो सारे कवियों में ना एक ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि पर्याप्त मात्रा में गहरा दुख होने तक व्यक्ति कवि नहीं बन सकता। दिस इज हाउ द मटेरियल वर्ल्ड में जो कविता बनती है वो इस तरह से बनती है, लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ कैसे, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर, सुंदर काव्य लिखते हैं। तो हमारा कहना क्या है, जब तक गहराई में आनंद का अनुभव नहीं होता है तब तक आदमी संत कवि नहीं बनता है। जब गहराई में आनंद का साक्षात्कार होता है तो ऐसा काव्य निर्माण होता है। उसके लिए वो यमक जोड़ने के लिए बहुत कष्ट नहीं करना पड़ता है, टला ट मला म भाई, बहुत रात रात बीतती है कभी कभी हमारे कवियों की, दुनिया के कवियों की, एक लाइन पूरी नहीं होती क्योंकि वो ट कटो और म को म नहीं मिलता है उनको, लेकिन संतों का जो काव्य है ना उत्स्फूर्त होता है, और ऐसे सुंदर गीत गाकर हमारा उत्सव संपन्न होता है, ये हमारा भाग्य है। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद लोचन दास ठाकुर, परम करुणा पाहुन दुई जना निताई गौरचंद्र, सब अवतार सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत, कुछ नहीं है गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, केवल आनंद के अलावा कुछ नहीं है। जितना भी आनंद आपको अपेक्षित है, जितना भी आनंद आपका स्वभाव है, वही आनंद की खान है। वो जैसे कैसा होता है ना गुलाब जामुन, हम लोग उसको वो चाशनी में उसको डुबा देते हैं, है ना, और जितना अच्छी तरह उसको फेटा रहता है ना पूरा ऐसा बहुत देर तक, उतना वो ज़्यादा रस खींचता है। इस तरह जितनी ज़्यादा साधना आपने अच्छी तरह से की होगी उतना आप इस आनंद कंद में डूब सकते हो। और उतना डूबने के बाद उसको चूस सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, उसका आस्वादन कर सकते हो, उसमें डूब सकते हो, अंदर से बाहर से, अंदर से खींच कर डूब रहे हो, बाहर से वैसे ही डूब रहे हो। तो अंदर डूबने के बाद भी उसमें आकर्षण करने की शक्ति ज़्यादा कब होती है, जब साधना अच्छी होती है। और वो आनंद का सागर प्रदान करने के लिए गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए हैं। हम तो कोई पता होना चाहिए सबको, कोई पता करने के लिए मंदिर है, मंदिर में ही ये सब पता होता है। हमको भी मंदिर में आके ही पता चला, और कहीं पता चल नहीं चला। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का और एक गुणधर्म है, वो मंदिर से बाहर निकलते हैं, मार्ग में जाते हैं और सब जगह ये सागर को बहाते हैं। आओ, अगर आपको यहाँ पर आने का कष्ट हो रहा है, हम आपके पास सागर को आके बहाते हैं, वहां पर डूब जाओ। गेला नगर द्वारे उदिलो अरुण पूरब भागे निज मणि गोरा अमनि जागे भकत समूह लोइलो साथे गेला नगर द्वारे। सब जगह घूम रहे हैं, वो भली सुबह को सब लोग माया में सो रहे हैं, सब लोग को उठाने के लिए महाप्रभु जाते हैं, ताथाई नित्य कर रहे हैं, भगवान नाम ले रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, बाह्य नींद से भी अंदर के नींद से भी जागृत कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा भाग्य है, ये चैतन्य महाप्रभु अभी हमारे साथ हमारे युग में जन्म लिए हुए। पूरा हमारा आंदोलन उनकी शिक्षा पर आधारित है। हर दिन निताई गौर प्रेमानंदे सा जय घोष होता है, निताई गौर प्रेमानंदे। क्या अर्थ है उसका? कि प्रेम और आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है, इतना ही है खाली। इनका नाम लेते ही प्रेमानंद, निताई गौर प्रेमानंदे, ऐसा महाप्रभु का कृपा है। जिस युग में सबसे अधिक दुख होने की संभावना है, उसी युग में प्रेमानंद का वर्षाव करने के लिए सागर लेकर वो आए। यानी जितनी दुखों की गहराई उतने ही आनंद की तीव्रता देने आई है। प्रोपोर्शनेट है वो, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन कब हम समझेंगे, कब हमें से दिन अमार, जब हमें समझ में आएगा हमको कि हमारा जीवन कितना सौभाग्यपूर्ण है। कोई रोने की जरूरत नहीं है, कोई छाती पीटने की जरूरत नहीं, कोई आक्रोश करने की जरूरत नहीं है, कोई दुख दुख करके तनावग्रस्त होकर डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। इज नो रीजन। वो हमको ना वो सेल्फ पिटी की आदत हो गई है, वो अपने ही दुखों पर रोते रहना, अपने ऊपर क्या करना, दया यानी पिटी। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, ऐसे हमारा संप्रदाय कहता है। कभी नहीं ऐसा कृपा इस समय हो रही है महाप्रभु चैतन्य के आविर्भाव के माध्यम से। हम सबको ये बार बार सुनना चाहिए, खास करके जब हमको दुख होता है, खास करके जब हम दुखी हो जाते हैं। दुख तो होता ही है, लेकिन दुखी होना दूसरी बात है, दुख रहना और दुखी होना दो अलग चीज़ें हैं। हम हमारे पास दुख भी है और हम दुखी भी हो जाते हैं, उस समय हमको याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए इस बात का कि दुखी होने का कोई कारण नहीं है। जब गौरांग महाप्रभु आए हैं, नित्यानंद प्रभु आए हैं, अपनी कृपा का वर्षाव कर रहे हैं, अपने भक्तों को भेज रहे हैं, भक्तों के साथ में संग दे रहे हैं, कोई दुख का कारण नहीं है। केवल आनंद के लिए जीवन बना हुआ है, ये केवल गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं। तो आइए गौर पूर्णिमा इस तरह से मनाएं। महा भगवान का क्या उद्देश्य है? भगवान चाहते हैं कि आप सब आनंद के सागर में डूबे और डूबे ही रहे। और क्या उनका उद्देश्य बताइए? दुखों का लवलेश न हो, आनंद की लहरों में, आनंद के सागर में सदैव हम डूबे रहें। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, ऐसे ही हम रहे, इसलिए वो आए हैं। और कलिर दोषेर नेदेर राजन, ऐसे दोष भरे है, दोषों से अनंत दोषों से भरे हुए गहरे अथाह सागर में रहते हुए भी कैसे आनंद का अनुभव करना है, ये दिखाने के लिए आए हो। कोई शस्त्र अस्त्र लेकर नहीं आए हैं। कलिर दोषेर निधेर राजन अस्ति यको महान गुण, ये महान गुण जो है ना वो देने के लिए वो आए हैं, स्वयं आए हैं, किसी को भेजा नहीं उन्होंने। कोई महत्वपूर्ण काम होता है ना, एक होता है महत्वपूर्ण काम, एक होता है प्रिय काम। तो इनका प्रिय कार्य पर परम महत्वपूर्ण कार्य किसी को नहीं भेज रहे, स्वयं आ रहे हैं और स्वयं ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारा भी ऐसा होता है ना, हमारे घर में भी कोई कार्य होता है तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम यजमान करता है, जिसका एक महत्व होता है कि भाई ये काम इतना महत्व है, मैं खुद, जैसे कृष्ण भगवान ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के संतों को स्वागत करना, उनके चरण धोना और अपने पीताम्बर से पोछना, ये स्वयं स्वीकार किया था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम था वो, संतों का स्वागत करना, उनकी कृपा लेना, उनका आदर आतिथ्य करना। वो स्वयं भगवान ने ही चयन किया कि मैं करूँगा इसे। उसी तरह से ये महत्वपूर्ण काम कलयुग के सभी दुखों के सागरों में डूबे रहने वाले दुखी ग्रस्त त्रस्त जीवों के लिए आनंद का संदेश लेकर मैं स्वयं जाऊँगा, और ये नाम जिसमें मैंने अपने सारी शक्तियों को, सारे स्वरूपों को, सारे मेरे व्यक्तित्व को अर्पण किया है, वैसा नाम कीर्तन के रस के माध्यम से मैं सबको अर्पण करूँगा और किसी को दुखी नहीं रहने दूंगा। जो जो आएगा वो सुखी हो जाएगा, जो नहीं आएगा उसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि फिर आप आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे फल है, आप सब लोग आ जाओ, मैं अकेले इनको बांट नहीं पाऊंगा, आप भी ले लो और आप भी बांटो अपनी शक्ति में, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ बांटो इस कृष्ण प्रेम के फल को, लेकिन किसी को वंचित मत रखो। इसलिए हमारे कृष्णानंद प्रभु है ना, वो ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो सह प्रवासियों को पूछते हैं, आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? तो निश्चित उत्तर नहीं आएगा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। आपने हरे कृष्ण महामंत्र सुना है? शायद सुना हुआ नहीं होगा। तो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बुलवा लेते हैं उनसे। एक बार ऐसा नम मंत्र बुलवाने से, किसी के मुंह से, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक भाग्योदय होता है। लेकिन थोड़ा सा अहंकार को छोड़ना पड़ता है ना, अभी सडनली अनोड़ अनजान आदमी के साथ बैठकर आप हरे कृष्ण महामंत्र जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, ऐसा पूछना थोड़ा सा एम्बेरसिंग होता है, कभी कभी संकोच भी होता है, लेकिन उनको कोई संकोच नहीं है। दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक अहम न होना और एक परम करुणा होना। अहम न होने पर भी करुणा नहीं होगी तो नहीं होगा, करुणा होगी तो फिर तुरंत, जहाँ अरे मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठे जिसको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं है, मेरे सम्मुख कोई व्यक्ति बैठे उसको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में पता नहीं है, तो अभी थोड़ी देर का समय संघ है, उसके बाद हम उतर जाएंगे, वो भी उतर जाएंगे, अभी क्यों ना बता दें। जैसे हमारी गोपियाँ क्या करती है पता है आपको, होली का उत्सव है तो कृष्ण ऐसे अकेले खड़े रहते कहीं, कुछ उनके मन में कुछ षड्यंत्र चल रहा है, खड़े रहते हैं, गोपियाँ उनको दूर से देखती हैं और कहते हैं रीठाड़ो नंद कुमार, याई पे न डार्यो क्यों न रंग। आपको समझ आया कुछ? वो सखियों को कह रहे री यानी अरी देख रही वो, देखो श्याम सुंदर जो है वो दूर खड़ा है, नंद को कुमार दूर खड़ा है, क्यों ना हम जाके उस पर रंग डालें। याई पे डारो क्यों न रंग। वैसे भक्तजन क्या सोचते हैं कि सामने भक्त बैठा है, अभी कुछ समय के लिए बैठा, आ गया जब स्टेशन पे उतर जाएगा, क्यों ना उसको भगवान के नाम का परिचय किया जाए। ये भी एक प्रकार की होरी है। होरी में क्या होता है, जिस रंग से आप रंगे हैं उसको आप दूसरों को रंगाते हो ना, है कि नहीं, इज इट नॉट ट्रू। और भक्त और होरी क्या होती है, आप रंग बिरंगे लग रहे हो तो आपको लगता है बाकी लोग सुखे क्यों हैं, वो भी रंग बिरंगे होने चाहिए, तो जा जाकर उनको रंग लगाते हैं। और कोई बिना रंग का डाक गिरा हुआ आता है तो बोले प्रभु जी क्या हो गया आपको, तो उसको भी रंगा देते हैं। वही है होली में और संकीर्तन यज्ञ में भी यही साम्य है। कोई हरिनाम के बिना सूखा है, दर्द भोग रहा है दुनिया में, तो उसको भी हरिनाम के रंग से रंगा देना चाहिए, ताकि उसका जीवन भी आनंदमय, आनंद के रंग से समृद्ध हो। तो ऐसा हमारा परम भाग्य है कि हमारा परिचय गौड़ीय संप्रदाय से हुआ। जीवन का परम भाग्य है वो, पता नहीं हमने कैसे पुण्य किए थे, क्या किए थे पता नहीं, इसकी क्या योग्यता है, इसके कारण हमारा भक्तों का परिचय हुआ, इसके कारण हमारा चैतन्य महाप्रभु से परिचय हुआ। भारतवर्ष में जन्म होने के बाद भी महाप्रभु का परिचय नहीं हुआ था, केवल गौड़ीय संप्रदाय में प्रभुपाद की संस्था में आने के बाद में हुआ, क्योंकि रहस्य की बातें यहाँ खुल जाती हैं। क्योंकि मैं इस्कॉन में अटैच हूँ, इसलिए इस्कॉन महान नहीं है। इस्कॉन महान है, उस महान संस्था में मैं जुड़ा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि ये एक रहस्य है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी छुपाया हुआ था। कुछ कुछ समय पर गुप्त रूप में जब एकांत समय था भक्तों के साथ, तब उन्होंने प्रकट किया कि मैं वही हूँ। लेकिन साधारण समय पर, जितने समय रहे आम जनता में, कभी भी उन्होंने ये सिद्ध नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। और ये रहस्यमय बात केवल आचार्यों के माध्यम से, गुरु शिष्य संप्रदाय के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से हम तक पहुँची ये बात। नहीं तो हमारे इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है? हम जब इतिहास पढ़ते थे ना फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो क्या लिखा है? चैतन्य महाप्रभु नाम के एक बंगाल के संत थे जो रास्ते पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया करते थे। एक संत की पदवी दिया उनको, भगवान को संत कह रहे हैं। संत भी महान होते हैं, कभी भगवान भी उनको अपने से महान मानते हैं, लेकिन संत लोग ऐसे नहीं मानते कि भगवान उनसे नीचे है और हम संत से ऊपर हैं। तो इतिहास ने हमको सिखाया कि एक महाप्रभु चैतन्य के नाम के एक संत थे, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय ने हमको सिखाया कि वो स्वयं भगवान हैं। वो छुपके भक्त का रूप लेकर आए हैं, और भक्त के रूप में आकर उनको छन्न अवतार कहा गया है, छुपा हुआ अवतार। और उनकी छन्नता जो है वो हमारे आचार्य उसका भेद करते हैं और हम सबको बता देते हैं। इसलिए यहाँ पर भी गौर निताई की पूजा होती है तो भक्त के रूप में पूजा नहीं होती है, भगवान के रूप में पूजा होती है। वो भक्त के रूप में आते हैं लेकिन हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। तो ये रहस्य की बातें केवल यहाँ खुली हुई है, और यहाँ का बच्चा बच्चा भी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। बलराम होइलो निताई, ये भी पता है सबको कि बलराम जी हमारे नित्यानंद प्रभु बनकर आए। तो ये हमारा भाग्य है, लेकिन कई साल इस्कॉन में रहने के बाद में हम भूल जाते हैं कि हमारा भाग्य क्या है। मतलब ठीक है, इट्स रूटीन, एवरी डे वी गो टू टेम्पल, एवरी टाइम वी गो एंड टेक दर्शन, ऐसा लगता है। लेकिन जिसके पास कोहिनूर हीरा है उसको पता होना चाहिए कि कोहिनूर हीरे की वैल्यू क्या है। लेकिन सदैव उसके पास में रहने से उसकी भी वैल्यू कलयुग में या भौतिक दुनिया में कम हो जाती है। तो उसके क्या आवश्यकता है? हमारे पास जो मूल्यवान वस्तु है उसका निरंतर हमें स्मरण रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, जिस सत्संग में इसका स्मरण दिलाया जाए कि हमारा भाग्य क्या है। या तो हमारी प्रवृत्ति हमेशा सदैव के लिए कहाँ रहती है? धन कमाने में, भौतिक सुख लेने में, भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए हमारा प्रयास रहता है। और क्या करते हैं लोग दुनिया में? कुछ नहीं, केवल भौतिक सुख का विकास करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, सारा समय उनमें ही लगा जाता है। और धन कमाओ, और सुख प्राप्त करो, और प्रॉपर्टी बनाओ, और बैंक बैलेंस बनाओ, और हमारे बच्चों का व्यवस्था करो, उसी में हमारा जीवन चला जाता है। लेकिन आनंद का स्पर्श भी नहीं होता ये सब करते हुए कहीं। और मंदिर में आकर हमारा आनंद ही आनंद, डूबे रहते हैं मंदिर में। तो फिर घर जाके और यहाँ आने के बाद कश्मकश होती है कि घर में जाके जो कर रहे हैं वो सही है कि यहाँ आने के बाद जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन उसका उत्तर यही है कि यहाँ जो आकर कर रहे हैं वही सही है। हाँ, तो ऐसे मैंने आपको एक होली की अच्छी उपमा दी आज, उपमा अलंकार, होली और संकीर्तन कैसे एक ही चीज़ है। तो कल हमारे भारतवर्ष में सब जगह पर होली दहन किया गया ना, होली का दहन, उसके बारे में कुछ बताना जरूरी है। वो जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके सामने सभी बालकों ने मिलकर और बाद में सभी माता पिताओं ने आकर बहुत सुंदर होली का उत्सव किया, बहुत ही सुंदर, जैसे उसको करना चाहिए वैसे। और ये हमारी संस्कृति है, भारतवर्ष में रहते हुए भारत के ऐसे उत्सवों का परिचय हमारे बालकों को ना हो, ये हमारा दारिद्र्य है, इट्स अवर बैंक्रप्सी। तो सभी बच्चों ने, बालकों ने हरिनाम संकीर्तन किया, बहुत जोर जोर से, धूमधाम से, बड़े कंठरव कहते ना कंठरव, वो महाप्रभु के इस भजन में भी कंठरव नाम है, शब्द आता है कंठरव, यानी उच्च स्वर। कंठ की क्या कैपेसिटी है, उतना पूरा उपयोग करते हुए हमको भी कीर्तन करते हुए और मंत्रोच्चारण करते हुए कंठरव से करना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने बहुत सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन किया, होली का दहन किया, और सारे विधि जो करना चाहिए वो सब किया, होली का पूजन किया, आरती पूजन, पुष्प अर्पण, परिक्रमा, जल अर्पण, तो उसकी कहानी भी बताना जरूरी है हमारे बालकों को और हमको भी। संक्षेप में, हिरण्यकशिपु नाम का भयंकर राक्षस था सत्ययुग में, आप सब जानते हैं, और उसे एक बहन थी, उसका नाम था होलिका देवी। और ये सब लोग कलयुग में राक्षस होने के बाद भी बहुत तपस्वी हुआ करते थे। रावण ने, कुंभकर्ण ने, शूर्पणखा ने, विभीषण ने, सबने तपस्या की थी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, आप नाम लेते जाइए, मधु, कैटभ, जितने भी राक्षस, सब लोग तपस्वी थे। सब लोग तप करके ही अपनी दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया, और किसी ने दुरुपयोग किया इसलिए राक्षस बने, सदुपयोग किया तो संत बने या देवता बने। जब जानते ना, हिरण्याक्ष को मारने के बाद में हिरण्यकश्यप ने कितनी भयंकर तपस्या की। आज तक के ब्रह्मा यानी सृष्टि के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में नहीं, सृष्टि के इतिहास में अभी तक गोल्ड मेडल हिरण्यकश्यप के पास ही है तपस्या का। यानी देवता, राक्षस सभी मिलाया जाए और चुना जाए तो अभी भी गोल्ड मेडल उसके पास है। फिर भक्तों के अंदर अब आप चुनेंगे तो फिर उसमें ध्रुव महाराज है गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, सबके अंदर दूसरा नंबर है उनका। क्यों? क्योंकि ऐसी भयंकर तपस्या किसी ने नहीं की थी आज तक। उसकी बहन ने भी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि आग तुम्हें नहीं जलाएगी, तुम आग से कभी जल नहीं पाओगे। इतना बढ़िया वरदान है, खास करके गृहणियों को लिए, घर में जो खाना बनाती है उनके लिए कोई बहुत बढ़िया वरदान है। तो फिर वो हो गया सब। बाद में फिर प्रहलाद जी भक्त बने और गुरुकुल में सबको सिखाने लगे भक्ति का माध्यम, और वो भी क्या कर रहे थे, हरिनाम संकीर्तन, सब लोगों को लेकर नृत्य करते थे। सब लोग भी भाव विभोर होकर, राक्षसों के बालक जो थे, राजकुमार, सब लोग मिलकर नृत्य करते थे ध्रुव जी के, प्रहलाद जी के नेतृत्व में। तो शंड अमर का परेशान हो गए, बार बार लेके गए तो यही तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, यही उनका चलता था। अगली बार गए तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण पाद सेवनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, यही बोले कहाँ से सीख रहे हो सब ये। तो फिर परेशान हो गए। तीसरी बार गए तो ज़्यादा ही परेशान हो गए, बोले तो मेरे घर का कैंसर है, कर्क रोग है मेरे घर में लगा हुआ, और शास्त्र कहता है जब कर्क रोग होता है किसी अवयव को तो वो कर्क रोग छाट देना चाहिए, तो वो जो अवयव है उसको काट कर शरीर को बचाना चाहिए, या तो उस कर्क रोग को काट के फेंको और शरीर को मुक्त करो, और नहीं हो सकता अगर ज़्यादा ही फैला हुआ है तो वो जो अवयव में फैला हुआ है उसको अवयव को काट के फेंक दो ताकि बाकी शरीर बचे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रहलाद हमारे वंश में लगा हुआ कर्क रोग है, इसको समाप्त कर दो, ये न के न प्रकारेण, शस्त्र से, अस्त्र से, मंत्र से, तंत्र से इसको समाप्त कर दो। और सारे शस्त्र, अस्त्र, मंत्र, तंत्र का उपयोग किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। इसको भगवान चाहते हैं, उसको कौन मार सकता है। तो हिरण्यकशिपु जिसकी भवे जब उठती थी तब देवता लोग यहां पर नहीं, स्वर्ग में कांपते थे। सामने खड़े होकर कांपना तो नेचुरल था, लेकिन यहां अगर भवे उठाई ऊपर तो स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र भी कांपते थे, ऐसा उसका दरारा था सब जगह पे। उसके इतने बड़े दरारे और इतने बड़े अहंकार को इतनी बड़ी ठेस लगी कि मैं पूरे 14 भुवन को नियंत्रित कर रहा हूं, 14 भुवन का हर एक नेता मेरे चरणों में है, शनि जैसे नवग्रह मैं दबा कर रखता हूं, मेरे आदेश पर ऋतु को निर्माण करते हैं। रावण की भी ये दशा थी, हिरण्यकश्यपु ऐसे ही थी, सब लोगों को पानी भरने के लिए रखा था घर पे, हाँ देवताओं को। और ऐसी स्थिति होने पर भी एक 5 साल का निशस्त्र बालक चुनौती दे रहा है मेरे साम्राज्य को, एक तरह से ना मरते हुए, हाँ कोई युद्ध नहीं कर रहे वो, लेकिन हमारे सारे शक्ति का प्रभाव ना होकर उसके ऊपर ना होते हुए एक तरह से हिरण्यकश्यपु के साम्राज्य को चुनौती दे रहा था वो। तो उसको लगा कि इसको भी एक उपाय बाकी है, इसको भी मेरी बहन के साथ रखा जाए, आग लगा दी जाए, और बहन को तो वरदान है आग से न जलने का, तो बहन नहीं जलेगी, आग जलेगी और प्रहलाद को जलकर भस्म कर देगी। बड़ी बढ़िया योजना है, इट्स वेरी इंटेलिजेंट प्लान। तो जो कल का मुहूर्त था ना चतुर्दशी का, फाल्गुन चतुर्दशी, उस दिन उनको गोद में बिठाया गया, हाँ बुआ ने गोद में लिया बड़े प्रेम से, भतीजे को बड़े प्यार दुलार किया। धीरे धीरे सब लोगों ने आगे चारों तरफ लकड़ी रखी और चिता जला दी। हाँ, लग रहा है कि बुआ बहुत प्रेम कर रही है और लोगों की बड़ी कुछ दूसरी योजना है। बुआ भी भतीजे पर कम प्रेम करती है, भाई पर ज़्यादा प्रेम करती है। हो सकता है डर भी होगा उसको भाई का, हो सकता है बताया भी होगा अरे भतीजे को क्यों मार रहे हो, लेकिन वो सब लोग कन्विंस थे कि ये हमारे कुल में लगा हुआ कैंसर है, तो उनको भी उसकी छुटकारा चाहिए था। और फिर वो आग बढ़ने लगी, आग बढ़ने लगी, आग बढ़ने लगी। हिरण्यकश्यप को लगा कि हमारा अभी कर्क रोग समाप्त होने वाला है। और धीरे धीरे क्या हुआ, प्रहलाद जी ऐसे ही रहे और होलिका देवी जलने लगी। हाय 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 हाय, मैं जल रही हूं, हे ब्रह्मा जी कहाँ हो आप, आपका वरदान क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए आकाश में, बोले मूर्ख औरत, अपनी जान बचाने के लिए जब संकट आपको अग्नि का स्वयं के लिए हो, तो उस समय स्वयं की रक्षा करने के लिए आपको यह वरदान दिया था, किसी अनजान बालक जीव को नष्ट करने के लिए वरदान नहीं दिया था। तुम सदयोग को उपयोग के बदले में उसका दुरुपयोग करने जा रहे हो, तो दुरुपयोग का वरदान नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड वरदान है। तो अभी क्या करे, वो ऑलरेडी आग के बीच में थी, भाग भी नहीं पाई। चलो मैं बालक को छोड़ती हूँ, मैं भी जाती हूँ बालक को बचाती हूँ, कुछ नहीं कर पाई वो, अपनी ही बनाई वो योजना में फंस गई वो। और सबसे बुद्धिमान समझने वाले हिरण्यकश्यपु का भी उधर दिमाग फेल हो गया, सोचा था क्या और क्या हो गया, है ना, ऐसा है। तो भगवान के दिए हुए वरदान को कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के द्वारा या भक्तों के द्वारा या गुरु के द्वारा पाए हुए अधिकार को, पद को कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो बुमरैंग होता है। जैसे वो होता है ना, कभी आप तंत्र करते हैं, तंत्र विद्या होती ना, तो कभी वो कुछ तंत्र विद्या किसी पर करते हैं, अगर उस पर वो असर नहीं करती है तो वो आकर उस पर असर करती है जो उसने उसको शुरुआत की थी, उसकी जहाँ से उस मंत्र का आरंभ हुआ था ना, उसी को आके नष्ट करता है। जीनी, जीनी कहते हैं ना उसको, जीनी में आकर आपने उसको बिजी नहीं रखा तो आके जिस दिन बनाया उसको, उसको ही खा जाता है वो। उसी प्रकार से इस जीवन में प्राप्त हुए अधिकार को जब हम दूसरे के अहित करने के लिए उपयोग करते हैं, यानी दुरुपयोग करते हैं, तो वो जो आपने अपनाया हुआ मार्ग है वो हमारे ही विध्वंस का कारण बनता है। इस तरह से होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद जी ऐसे ही बिल्कुल बाल भी, बाल कैसे होते हैं पता है आपको, 3 सेकंड में सारे बाल जलकर भस्म हो जाते हैं, मतलब है ही नहीं बाल। आपने कभी मुर्दे को जलते हुए देखा होगा, तो बड़े लंबे घने बाल होंगे तो अग्नि देते ही 3 ही सेकंड में सारे बाल नष्ट हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ, वैसे के वैसे बाहर आए हो। ये होलिका दहन का सबसे बड़ी शिक्षा है। सदैव पवित्र रहो, सदैव शुद्ध रहो और सद हेतु के लिए समर्पित रहो, यानी भगवान के लिए समर्पित रहो। जो भगवान के लिए समर्पित है उसको विश्व की कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती। कितना भी सोच समझ कर बुद्धि का उपयोग किए हुए, सिद्धि कियों के साथ, शक्तियों के साथ किए हुए षड्यंत्र का भी हम बलि नहीं हो सकते अगर हम भगवान समर्पित हैं, क्योंकि भगवान से अधिक कोई बड़ी ताकत दुनिया में नहीं है। जो भगवान समर्पित है उसके साथ सबसे शक्तिमान भी शत्रु खड़ा होगा तो भी उसका बाल नहीं भागा हो सकता है। ये प्रहलाद के उदाहरण से हम सीख सकते हैं, प्रहलाद के लिए जीवन में क्या क्या नहीं हुआ, किस प्रकार से मृत्यु का प्रयत्न नहीं किया गया, लेकिन हर समय बिना किसी विरोध के वो बच गए, है ना, कोई विरोध नहीं किया, जूझे नहीं वो, कोई अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं की उन्होंने, प्रयत्न नहीं किया, केवल भगवान का समर्पण, यही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी, जिस पर कोई शस्त्र का परिणाम नहीं हुआ और प्रहलाद जी बच गए। आज भी आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि फालेन नाम का गाँव है वृंदावन धाम में, उत्तर वृंदावन में है वो, नंदगांव के आगे कोशी के आसपास है। उस फालेन नाम के गांव में अभी भी प्रहलाद के वंशज रहते हैं और उसमें से एक व्यक्ति बड़ा तप करता है। जैसे एक होता ना कोई गोस्वामी परिवार में, अभी ये आचार्य हैं, ये गुरु हैं, ऐसे होता ना, फिर उसके बाद में उसका पुत्र को वो सम्मान मिलता है, फिर युवराज कहते हैं उसको, फिर वो गुरु बन जाते हैं। वैसे सांप्रत वर्तमान समय में एक व्यक्ति होता है जो उस कुल में प्रधान तपस्वी होता है, वो बड़ा तप करता है, बड़ा नियम पालन करता है, नाम जप करता है बहुत करोड़ों, और होली का दहन के रात को पूरा दिन उपवास करके तप करके नाम जप करके जब होली का दहन होता है, जैसे हमारा ये पूरा हॉल है ना मंदिर का, इतना बड़ा होली का अग्नि होता है, हम लोग थोड़ा छोटा छोटा करते हैं अपने घरों के नीचे, बहुत विशाल होली का आयोजन होता है, बहुत विशाल अग्नि जलाते हैं, और वो होली का अग्नि, होली की अग्नि जब पूरी तरह प्रज्वलित होती है बहुत तेज से अपने चरम सीमा पर जाती है, तब ये व्यक्ति उठता है और पूरे होली के अंदर प्रवेश करके निकल जाता है और फिर लौट के आता है उसी मार्ग से, उसका बाल भी नहीं जलता है, ऐसा हमने देखा है, और वीडियो भी आएंगे आज आ जाएंगे वीडियो कल रात को जो हुआ उधर। तो ये सब सत्य है, ये कोई कहने वाली ऐसे बातें नहीं, भूल भुलैया वाली है, आई डोंट बिलीव दिस, जाकर देखो आप तो आपको पता चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये हम सबको ये बताता है कि हमारे देश में बहुत अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है, इस पर हम कभी विश्वास भी रखते नहीं, कभी कभी विश्वास रखना भी कठिन है, ऐसे दिव्य शक्ति इस देश में है, खाली उसमें कैसे ना पासवर्ड की ज़रूरत है, खाली कनेक्ट करने के लिए, किसको नहीं चाहिए शक्ति बताओ, इस चमत्कार सबको लगता है कि मेरे साथ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे चमत्कृति जो है वैसे हमारे गौरांग महाप्रभु हैं। चमत्कार क्या है, पापी से पापी लोगों को भी वो उद्धार करके संत बनाते, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि पाप करके स्वयं भी कोई सुखी नहीं रह सकता है, आप किस पर अत्याचार करेंगे तो उसको भी इतना आनंद नहीं आता है, एक अघोरी अनुभव होता है उसके अंदर, लेकिन आत्मा को जो आनंद की आवश्यकता है वो आनंद उसमें नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसा आध्यात्मिक दिव्य आवश्यक आनंद जो आत्मा की आवश्यकता है, वैसा आनंद हमको चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने से हो सकता है, चाहे हमारे जीवन में परम अनंत जीवनों का पापों का ढेर भी लगा हो, फिर भी चमत्कार की तरह हमारा जीवन के पापों का ढेर क्षण में नष्ट होकर परम आनंद का अनुभव हमको प्राप्त हो सकता है। ये चमत्कृति हमारे विश्व में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे संप्रदाय में उपलब्ध है। तो मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा इतिहास श्री चैतन्य महाप्रभु आने का, संध्या को फिर हम उनके आविर्भाव का वर्णन करेंगे, आज इतिहास का वर्णन करेंगे। एक इतिहास है, अभी वो भागवत की और अनेक संप्रदाय अनेक शास्त्रों की दीर्घ कहानियां हैं, उसको हम संक्षेप में बताएंगे। एक इतिहास है कि ब्रह्मा जी को एक बार भ्रम हुआ था, उनको लगा कि अरे अगासुर का वध एक बालक ने किया, वो कैसे मुमकिन है, वो तो अगासुर के भय से ब्रह्मा लोक में भी लोग कांप रहे थे, उसका दरारा और उसकी दहशत जो है वो पृथ्वी लोक से ब्रह्मा लोक तक लोगों में तपस्वियों में भी फैली हुई थी, और सुना कि एक बालक ने उसका वध कर दिया, और ये भी सुना कि अरे वो बालक भगवान है, तो उनको लगा ये नहीं हो सकता है, तो स्वयं नीचे गए परीक्षा करने के लिए, भगवान की परीक्षा करने के लिए अज्ञान में पड़े हुए, और भगवान के बालक छीने, भगवान के बछिया बछड़े छीने, फिर मजा देखने के लिए आए, तो भगवान ने तो बड़ा चमत्कार कर दिया, भगवान ने सारे बछिया बच्चियों के रूप में अपने आप को विस्तारित कर दिया, और वैसे ही रहे एक साल तक, यहाँ का एक वहाँ का एक क्षण, यहाँ का एक साल, वैसे ही गौचारण करते रहे, आनंद लेते रहे, विवाह हुआ सबका धूमधाम से, ब्रह्मा जी आके देखते रहे, देखता हूँ क्या चल रहा है, सब दुखी होंगे, बालकों को खोकर रोते होंगे, ये तो ये शहनाइयाँ बज रही है, ढोल बज रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया काम हो रहा है, सब गैया आनंद में है, सब मैया आनंद में है, एवरीबडी इज हैप्पी, तुमको समझ में नहीं आया कि बालकों को खोने के बाद भी ऐसा कैसा हो सकता है, देखता हूँ सब वैसे के वैसे ही है। तो फिर नीचे आए, देखा सब लोग वैसे ही बैठे हुए हैं, खा रहे पी रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, उसके भ्रम में भर डालने के लिए भगवान ने सारे बालकों को बच्चियों को सबको विष्णु बना दिया, एक एक विष्णु के सामने 33 करोड़ देवताओं का एक एक सेट बनाकर सब अपना अपने विष्णु की पूजा कर रहे हैं, करोड़ों विष्णु और करोड़ों सेट 33 करोड़ देवताओं के एक एक विष्णु का पूजन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, हर विष्णु के पास ब्रह्मा, हर विष्णु के पास शिव जी, हर विष्णु के पास, ये देखकर जिन चार दिमाग में पूरे सृष्टि के निर्माण का सॉफ्टवेयर फिट करके रखा है पूरा करप्ट हो गया, कंप्लीट करप्ट, कोई कमांड दे लो कोई फंक्शन ही नहीं आ रहा है उसके अंदर, जीरो फंक्शन। आप इमेजिन हमारे ये जो हमारा जो दिमाग है ना, इसमें जो कैपेसिटी है ना, उतना अगर आपको कंप्यूटर बनाना होगा समझो, तो 40 स्क्वायर माइल्स इतनी जगह चाहिए, 40 वर्ग माइल माइल इतनी जगह में आपको वो हार्ड डिस्क बनाना पड़ेगा। तो हमारे और आपके दिमाग में जितना मेमोरी हो सकती है उतना हम उसको फिट कर सकते हैं। वो एक व्यक्ति का दिमाग है, ऐसे करोड़ों दिमाग उसने बनाए हुए हैं अनंत। अब जो आज की जनसंख्या 750 करोड़ है विश्व की, केवल पृथ्वी की मनुष्य की ये जनसंख्या है, फिर स्वर्गलोक में भी है, फिर और लोक में भी आगे लोग रहते हैं, नीचे भी लोग रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड का जनसंख्या कितनी होगी। वो सारे जनसंख्या, मनुष्य संख्या, कीटक संख्या, पेड़ संख्या, जितनी भी संख्या है वो सबका दिमाग बनाने का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ब्रह्मा जी के चार दिमाग में फिट है। यू कैन इमेजिन क्या उसकी कैपेसिटी होगी, क्या सूक्ष्म शक्ति होगी उनके अंदर। वो सारा दिमाग जो है ना वो पूरी तरह से एक तरह से न्यून हो गया। ब्रह्मा जी को समझ में आया। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं एग्जाम के लिए और रात रात में पढ़ाई करने वाला, एक समय ऐसा आता है कि हम किताब खोल के पढ़ रहे हैं और दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, पूरा दिमाग एकदम स्टैटिक हो गया है, कंप्लीट ब्लैंक हो गया है, ना अंदर जा रहा है ना कुछ बाहर आ रहा है, उसको विश्रांति की आवश्यकता है, पूर्ण तरह से भ्रमित हो गए। फिर उनको अनुभूति हुई कि हमारे भगवान है ये, जो भ्रम था ऊपर वो सत्य निकला कि वो 7 साल का बालक और कोई नहीं, भगवान है 5 साल का बालक। फिर पश्चाताप हुआ, फिर दंडवत किया, फिर प्रार्थना किया, फिर गिड़गिड़ाए रोए, पश्चाताप हुआ कैसा क्यों किया मैंने, और वो परीक्षा भी कैसे की, अपने भक्तों से अलग करके परीक्षा की, भगवान के अपने भक्तों से अलग कर दिया। सबसे बड़ा अपराध है वो, भगवान को उनके भक्तों से जुदा करना, विरह में फेंकना अपने बल के द्वारा, दुरुपयोग, फिर दूर से दुरुपयोग किया ना अपने बल का। तो जब अनुभूति हुई कि अपने अपने दोष की, अपने कार्य में जो त्रुटि हुई, तो बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और भगवान को सुना रहे अपनी प्रार्थना, दिल की बातें सुना रहे, हृदय की बातें। फिर भगवान ने फिर भी क्षमा नहीं किया, फिर दंडवती परिक्रमा किया, ब्रज का, रज का आश्रय लिया, धाम का आश्रय लिया, धाम के स्पर्श से, धाम के शरणागति से धामी भगवान ने उनको क्षमा कर दी। फिर चलो ठीक है जाओ अभी आप, तो हंस में बैठ के जाने लगे। वो पश्चाताप है ना, इतना धबधबा बह रहा था पश्चाताप का, नहीं रो रहे थे, वो उतर गए तुरंत, उधर ही तुरंत ही उतर गए ब्रज में ही, और बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हाउद तैयार हो गया पूरा। नाम क्या उसका, ब्रह्म सरोवर, क्या आपका जो मंदिर है ना, मंदिर ये कि पूरा उसमें बैठ सकता है, इतना बड़ा हौद बना, क्योंकि 8 आंखों से ब्रह्मा जी रोए पश्चाताप में। फिर उठे वहां से और राजहंस पे बैठ के उड़े और भारतवर्ष में से गुजर रहे हैं, अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो फिर भी रहा नहीं गया, दोबारा एक बार उतर गए एक जगह पर। और क्या सोचा उन्होंने कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैं ब्रह्मा हूं ना, मैं, मुझे ब्रह्मा का पद मिला, अधिकार, बुद्धि, शक्ति, प्रथम नागरिक, निर्माण, नियंत्रण, क्या बताओ आप, क्या शक्ति नहीं उनके पास, ब्रह्मा के पद में प्राप्त हुआ ना, इसलिए सब अहंकार हुआ, इसलिए परीक्षा करने की भावना हुई, ब्रह्मा का पद मुझे नहीं चाहिए, और ये निश्चित किए बिना मैं अभी जाऊंगा नहीं भारतवर्ष से, मुझे वो लिखित चाहिए कि अगली बार मैं ब्रह्मा नहीं बनूंगा, तप किया एक ही उद्देश्य से। तो क्या हुआ, कहाँ तप किया, आज जहाँ पर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, अंतरद्वीप मायापुर, उसी स्थान पर बैठ कर तप किया उन्होंने। अभी भी द्वापर युग का समय है, अभी कलयुग का समय शुरू नहीं हुआ है, ये द्वापर युग में चल रहा है, जब भगवान 5 साल के हैं, अभी 6 साल के हो गए, अभी तो भगवान की बाल लीला, ब्रज लीला चल रही है, बहुत समय है भगवान का भी लीलाओं को अंत होने के लिए। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पूर्ण विकसित रूप में, स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए, अलंकार पहने हुए, मालाएं पहने हुए, अजानु बाहु, अनंत सूर्यों की प्रभा धारण किए हुए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और उन्होंने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने शरणागत, अपने चरणों में शरणागत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे आप वरदान दे दो कि मैं किसी भी कीमत पर ब्रह्मा नहीं बनूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि ये वास्तविक पश्चाताप है जिसमें वो अपने पद, अधिकार, धन, दौलत, नियंत्रण सब कुछ त्याग देने को तैयार है भगवान की कृपा के सामने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और गारंटी मांग रहे वो, तुरंत भगवान ने गारंटी दिया, और एक बोला कि मुझे ना अच्छा कोई जन्म भी मत दो जिससे मुझे छोटा मोटा भी अहंकार नहीं होना चाहिए, तो भगवान ने क्या वरदान दिया, ऐसा जन्म दूंगा कि आपको कभी अहंकार होगा ही नहीं, उसमें जन्म मुसलमान घर में होगा और नाम हिंदुओं का भगवान का लोगे, दोनों तरफ से मार खाओगे, है ना। अभी मुसलमान धर्म में अगर आप हिंदू धर्म का भगवान का नाम लोगे तो वहां से काफिर कहलाओगे, और हिंदू धर्म के लोग कहेंगे तो मुसलमान है, हमारे भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, दोनों तरह से निंदा होगी, फिर भी आप नामाचार्य के रूप में प्रसिद्ध होंगे। ऐसी व्यवस्था कर दी कि श्रेष्ठतम आदरणीय स्थान प्राप्त होगा, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो शून्य सम्मान, और सम्मान के साथ प्रचुर मात्रा में निंदा प्राप्त होगी। अभी समझो आप लोगों को किसी को ऐसा वरदान मिलेगा तो अच्छा लगेगा आपको, हमको लगेगा कि भाई ब्राह्मण का कुल जन्म होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, अच्छा पुरोहित करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबका सम्मान लेंगे, सब लोग दक्षिणा देंगे, आदर करेंगे, सबको प्रचार करेंगे, प्रवचन करेंगे, यज्ञ करेंगे, यजन याजन पठन पाठन सब करेंगे, और भक्ति में भी हमको अच्छा जन्म चाहिए ताकि हम सम्मान से रहें। लेकिन ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जो है वो परम श्रेष्ठ परमोत्तम पद पर है, फिर भी मांग क्या कर रहे हैं कि मुझे ऐसा जन्म दो कि कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानते उस अनुभूति पर पहुंच गए थे कि हमें जब तक हमारे प्राप्त ऐश्वर्य का विरक्ति नहीं प्राप्त करते हम लोग, तब तक नहीं त्याग करते, तब तक महाप्रभु चैतन्य कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। जितना भी आसक्ति है उतनी कम कृपा प्राप्त होती है, जितनी कम आ सकती है उतनी ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है, उतना ज़्यादा प्रेम प्राप्त होता है, ज़्यादा अनुभूति साक्षात्कार प्राप्त होता है। और जिसको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो सब कुछ छोड़ना चाहता है, उसको पूरे पूर्व उस ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, भक्ति के ऐश्वर्य को। और जब चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया और वरदान दिया और एक आश्वस्त किया उनको, डोंट वरी, जो आप जैसे आपकी इच्छा वैसे होगा, तब शांति से राजहंस में बैठकर ब्रह्मा लोक चले गए। ये इसका पहला इतिहास है। और कौन बने वो? हरिदास ठाकुर बने, साक्षात ब्रह्मा है। 35 साल पहले चैतन्य महाप्रभु को जन्म लिया उन्होंने फुलिया ग्राम में, और यवन कुल में जन्म लेके ही फिर भी हरिनाम का जप शुरू किया उन्होंने। ये एक इतिहास हो गया। दूसरा इतिहास ब्रज का है, ये भी ब्रज का ही था, कि राधा रानी को यशोदा मैया ने एक बार प्रेमा वेश में आकर दोनों हाथों को हल्दी लगा दी और एक तरह से निश्चय किया, वाग निश्चय यानी एंगेजमेंट, विवाह का एक प्रकार से भाव विभोर होकर निश्चय कर दिया, कोई योजना नहीं बनाई थी, ऐसे ही भाव से ही कर दिया। बाद में पछताई यशोदा बहुत, अरे मैंने ऐसे कैसे किया, ना नंद बाबा से पूछा, ना लड़की के माता पिता से सलाह की, और अपने ही भाव में आकर हवा में उड़ते हुए हल्दी लगा दी, क्या कहेंगे वो लोग। यही संस्कार है नंदगांव के, लड़कियों को भोजन करने के लिए बुलाया जाए और वाग निश्चय करके भेजा जाए, ऐसा उनको लगेगा, ये उसके मन में खटक हो रही है। और वहां पर राधा रानी भी हवा में है कि भाई जो मेरे हृदय में बात थी वो यशोदा मैया ने अपने आप पूरी कर दी, सबका काम आसान कर दिया, क्योंकि नंद बरसाने में भी लोग सोच रहे हैं कि कैसे बात करें, कैसे बात करें, कौन पहले बात करें, कौन सा समय हो योग्य, अभी ढूंढ रहे, वो सोच रहे, चिंतन कर रहे हैं, और उनका भी काम आसान हो गया है ना। लड़के वालों से पूछा जाता है और फिर मंगनी होती है, फिर बातें होती हैं, फिर वो चर्चा होती है उसके बाद में, तो हमेशा लड़के वालों से आरंभ होता है, लेकिन लड़के वालों से होता है तो आसान सब हो जाता है, नो डिफिकल्टी। तो राधा रानी पहुंची, तो राधा रानी जब बरसाने पहुंची ना, तो भी एक बाह्य चेतना में आ गई, अरे बाबा क्या कहेंगे, मैया क्या कहेगी, भोजन बनाने के लिए भेजा था और हल्दी लगा कर आ गई, तो बहुत दुखी हो गए, आनंद में थे बड़े दुखी हो गए, संकोच में आ गए। ललिता ने कहा कोई बात नहीं, इसमें हाथ धो लो आप, प्रिया कुंड के पास खड़े थे उस समय, तो प्रिया कुंड में हाथ धोए तो वो पीला हो गया, उसका नाम पड़ा पीली पोखर। मैं आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ बाय द वे, बहुत सुंदर लंबी कहानी है, लेकिन आज का प्रयोजन दूसरी दिशा में है। तो अगले दिन सबको पता चला, केवल संकेत संकेत से ही, हाँ बहुत होशियार होते ब्रजवासी, प्रेम से कारण ना एक दिव्य बुद्धि आ जाती है, याद एक बात आप समझ लेना सब लोग, जब प्रेम होता है ना तो प्रेमी लोगों के विषय में बड़े दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है हमको, उनके हृदय की बात पता चलती है, उनके क्षेम कुशल के बारे में अनुभूति होती है, ये प्रेम बड़ी अद्भुत शक्ति है। तो ये सब हो गया, वो कहानी को वहीं छोड़ते हैं, और कृष्ण को जो है ना वो नंदगांव में अधिक समय रहा नहीं जाता है, तो वो बार बार बरसाने आते हैं। मैंने बताया ना, अकेले खड़े हैं, री ठाड़ो नंद कुमार, ऐसे आते रहते, कभी कंकड़ बेचते रहते हैं ऐसे यहाँ से वहाँ, सब पूछते, अरे क्या का कर रो है, बाबड़ो है गो का? बोला नहीं, कंकड़ बेच रहा हूँ। मतलब मन में विचार ये है कि राधा रानी आएगी तो कंकड़ चुभेगी ना, तो कंकड़ रोड साफ कर रहे हैं बरसाने का, क्या काम उसका वहाँ पर। ऐसे आते रहते हैं, तो वैसे ही आए वो, तो पीले पोखर के पास में आए, देखा तो अरे पहले तो अच्छा था ये कुंड, अभी पीला कैसे हो गया। अभी देखिए, ठाकुर जी को सब पता है लेकिन फिर भी उनको नहीं पता है, तो वो पूछ रहे अपने आप को, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीला रंग क्या है, ऐसे पूछते पूछते, सखा भी साथ में, सब लोग सखा भी सुन रहे हैं, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, ऐसे करते करते ना वो जल में उतर जाते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। और फिर उतरते उतरते उड़ते उनकी आका, उनकी जो आवाज़ है, उनकी ध्वनि जो है वो गूंज रही है पूरे पीली पोखर के वातावरण में, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, और वो उतर जाते पूरे पानी में। एक समय ऐसे आता है, वो सीढ़ी में उतरते 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 उतर उतरते जल के पृष्ठभाग पे केवल तीन वस्तुएं घूम रही है, क्या, दो हाथ और एक मोरपंख जो सर पे लगाया हुआ है, सर भी डूबा हुआ है, मोरपंख जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो है ऊपर, दो हाथ उस लेवल पे है, और ये तीन वस्तु जो है पूरे पीली पोखर में घूम रहे हैं, और आवाज गूंज रही है, ये पीली वस्तु क्या है, बोलो ये पीली वस्तु क्या है। सब ग्वाल बाल भी आश्चर्यचकित है, क्या हो रहा है कन्हैया को आज। फिर वो कन्हैया जो बाहर आते हैं पानी से, जो बाहर आते तो चमत्कार होता है, ये भी एक प्रेम की शक्ति है। वो सांवले रंग के ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर जी पूरे गोल्डन हो गए, स्वर्णमयी कांति हो गई उनकी, उनको पता नहीं है, वो तो भाव में विभोर हो गए पूरी तरह से, और फिर भी पुकार रहे हैं, पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है। अभी सांवला रंग पूरा चला गया है, पूरा स्वर्ण पीत वर्ण आ गया उनके ऊपर। फिर बाहर आते हैं, बाहर आते हैं पीली पोखर के, और एक क्या कहते हैं ना, उसको अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, अपने सखाओं से पूछ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ हैं, जो श्याम सुंदर से मिलाओ, जो कन्हैया से मिलाओ, नंदलाल से मिलाओ, नंद कुमार से मिलाओ। तो ग्वाल बाल कह रहे, अरे बाबड़े हो गयो, बाबड़े हो गयो, तू ही श्याम सुंदर है, तू ही नंद कुमार है। बोले नहीं, मुझे नंद कुमार से मिलना है, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे उससे मिलाओ। तो बार बार बालक यही बोल रहे हैं, अरे तुम खुद श्याम सुंदर हो। फिर श्याम सुंदर जो अभी उस भाव में है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बालकों को पता नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ और मुझे गलत उत्तर दे रहे हैं, इसलिए उनका साथ छोड़ देते हैं, एक तरह से क्या कहते हैं ना, परेशान होकर छोड़ देते हैं, और बालक ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैया ने हमारे संग भेजा है खेलने के लिए, और क्या अवस्था हो गई उनकी, क्या पूछेंगे, तुमने क्या खिलाया कन्हैया को, कहाँ डुबाया, कौन से पानी में डुबाया, क्या हुआ, एक क्या हालत बना के भेजी है तुमने, आप बताओ हमें, तो क्योंकि एक तरह से हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो सब बालक उसके लिए परेशान है, जब घर जाने का समय आएगा तो क्या मैया को जवाब देंगे, ये अवस्था में क्या क्या बताएंगे मैया को। और वैसे भी अगर मैया को बताने की चिंता नहीं होती, फिर भी हमारा मित्र जो है ऐसे भयंकर अवस्था में कैसे जा रहा है। अगर हम मैं पूछूंगा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो आप बोलेंगे अरे निगड़ी में कथा करने आए थे, क्या हो गया इनको, क्या घर वालों ने क्या खिलाया सुबह, ऐसा लगेगा मति भ्रष्ट हो गई पूरी। तो बालक बहुत चिंतित थे कृष्ण के हित के हेतु। फिर बालकों का साथ छोड़ दिया और कृष्ण जो है ना वो पेड़ों को पौधों को सबको पूछने लगे कि श्याम सुंदर कहाँ हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं, श्याम सुंदर से मिला दो। पेड़ों से गले लगा रहे हैं उसको, बेलियों को गले लगा रहे हैं, रो रो के पुकार रहे हैं, पूछ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं। पता है पूरा दिन भर ऐसे ही रहे वो, और संध्या होने का समय आया ना तब वो अपने वास्तविक भाव में आ गए, उस भाव विभोरता से बाहर आए और अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में आ गए कि मैं श्याम सुंदर हूँ। आप लोगों को पता नहीं, मालूम है कि नहीं, लेकिन समझो किसी को कभी कभी ना हॉन्टिंग होता है, हॉन्टिंग हमारे साइकोलॉजी की में साइकेट्री में देखते हैं कि ऐसे मरीज आते हैं, जो ऐसे आते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं मैं अब्राहम लिंकन हूँ, मैं जॉर्ज बुश हूँ अमेरिका का अध्यक्ष हूँ, या मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, ऐसे भाषण देने लगते हैं। हमारे ऐसे वार्ड में ना, साइकेट्री वार्ड में ऐसे राउंड लेने जाते हैं ना, तो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं और एज इफ दे आर अमेरिकन प्रेसिडेंट, ऐसा भाषण देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको एक 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 बार की बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कन्फ्यूजन विथ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं उसको। तो कृष्ण उसमें थे दिव्य, जो बाहर आए तो जब भी वो ठीक हो जाते ना तो पहले थक जाते हैं वो, उस आवेश, आवेश जब आता है ना तो आवेश जब जाता है तो आवेश होने की वजह से, वो श्रम के वजह से वो व्यक्ति थक जाता है। तो शाम को जब कृष्ण का वो आवेश खत्म समाप्त हो गया तो कृष्ण बहुत थक गए, इतने थक गए कि सब लोग उनको कंधे पे उठा के घर पे ले गए, लेकिन वो सही थे, मतलब माँ को दिखाने लायक थे। तो ये जो कहानी है ये हमको परम पूज्य बरसाना स्वामी महाराज ने बताई थी जब वो हमारे घर पे आए थे। वो न्यू वृंदावन में भी निवास करते, प्रभुपाद के शिष्य हैं वो, बरसाना स्वामी महाराज, बड़े अद्भुत संत हैं वो। पर नाम जैसा बरसाना उनका है, उनको बरसाने के बारे में पूरा 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 ज्ञान है कंप्लीट। उन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने पीली पोखर के इस लीला के माध्यम से ये ऐलान किया, घोषणा किया कि मैं इस रूप में आऊँगा। तो यही इस रूप का अर्थ क्या है कि इस रूप को, वो जो पीला रंग था ना, वो कृष्ण पूछ रहे हैं पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है, वो राधा रानी का प्रेम है। वो प्रेम इतना प्रभावी है कि उनकी आत्मा को प्रभावित कर गया वो, और यहाँ तक प्रभावित कर गया कि वो उनको राधामयी बना दिया उस रंग ने। वो अपने आप को भूल गए कि मैं नंदलाल हूँ, वो तो राधा रानी समझ लेंगे। राधा रानी समझ कर वो पूछ रहे हैं श्याम सुंदर को मिलना है, राधा रानी का ध्यास क्या है कि उनको श्याम सुंदर से मिलना है। तो उस भाव में वो पूछ रहे थे, ग्वाल बालों को समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन भर में श्री कृष्ण भगवान ने इस भाव को प्राप्त होने के बाद जो भी दिन भर अनुभव किया वो इतना परमानंद का अनुभव था, इतना परम उत्कृष्ट परम उत्कट अनुभव था कि जब उससे बाहर आ गए तब श्री कृष्ण ने मन में ही ठान ली कि मैं भी इसी भाव को लेकर अवतार लूंगा, मुझे जानना है इसके अंदर क्या है। इतना मुझे अद्भुत अनुभव हुआ प्रेम का जो मुझे श्याम सुंदर होकर भी, मैं सर्वज्ञ होकर भी मुझे पता नहीं है। तो राधा रानी को ये, राधा रानी तो स्वयं राधा रानी है, इसी भाव में रहती है, तो ये निश्चित है कि राधा रानी मुझसे कई करोड़ों गुना अधिक आनंद का रोज अनुभव करती है मुझसे प्रेम करते हुए। मुझे ये भी पता नहीं कि मुझ में वो क्या बात है जिसको देखकर इतना भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है। तो ये सर्वप्रथम उनके मन का निश्चय की घोषणा थी एक प्रकार से, अप्रत्यक्ष रीति से। उन्होंने स्वयं नहीं बताया कि मैं आऊँगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रीति से साधुजन बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने प्रकट किया ये भाव कि अगले अवतार में चैतन्य महाप्रभु बनकर आएंगे। फिर उसके बाद में बड़े हो गए ठाकुर जी, तो बहुत छोटे से थे, नंदगांव में ही लीला करते थे, वत्सपाल भाव में थे। उसके बाद गोपाल बने तो दूर दूर जाने लगे। वत्सपाल में क्या होता है, बहुत पास पास में गैयाओं को बछड़े को घुमाते हैं, दूर जाने का काम नहीं होता है। दोपहर में लौट के आते हैं, बाबा के साथ लंच खाते हैं। लेकिन गोपाल में कैसा होता है, बड़ी गाय बड़ी बैलों को लेकर दूर जाना पड़ता है। सुबह गए तो शाम को लौट के आते हैं। तो वृंदावन मधुवन तालवन कुमुदवन ऐसे गौचारण करते हैं। तो रात को जब बंसी बजाई ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के दिन, तो वृंदावन में बजाई ना, जमुना किनारे बंसी बट के किनारे बजाई, और रहते नंदगांव बरसाना सब रहते हैं। तो वहाँ से गोपियाँ भाग के आई थी बीच रात जंगल में। तो बहुत लंबी कहानी है, रास पंचाध्यायी भागवत का हृदय है वो। लेकिन हमारे आज के संपर्क में जो संबंध में जो बात है वो ऐसी है कि वो रास अभी आरंभ भी नहीं हुआ था। आप भागवत पढ़ेंगे ना तो रास को आरंभ होने के पहले ना बहुत सारी घटनाएं हुई है। कृष्ण भगवान ने उसके पहले ही अनंत रूप धारण किए थे, और एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण थे, और किसी को जल लाकर दे रहे हैं जमुना जी से, किसी के चरण दबा रहे हैं, किसी के लिए गीत गा रहे हैं, ऐसे ही व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं, कई किसी को हवा दे रहे हैं, किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, किसी के साथ, और उन सबको रास लीला का नृत्य भी शुरू नहीं हुआ है, फिर भी सबको, सब इतने मग्न हो गए उनके संग में कि उन तब से उनको लग रहा है कि वो सबको छोड़ के मेरे ही संग में बैठे हैं। सब गोपियाँ यहाँ वहाँ बैठी हुई हैं और मेरे संग ही कृष्ण बैठे हुए हैं, सबको छोड़कर मुझको संग दे रहे हैं, अभी रास नृत्य शुरू नहीं हुआ है। तो उतने में उनको एक प्रकार का ऑटोमेटिक एक अहंकार निर्माण हो गया, गर्व निर्माण हो गया कि देखो मैं जरूर कुछ स्पेशल हूँ, विशेष हूँ, सबको छोड़कर वो मेरे साथ बैठे हुए। और सबके मन में, राधा रानी के मन में भी यही विशेष भाव निर्माण हुआ कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। और भगवान को ना, भले वो राधा रानी हो या गोपी हो या कोई भी निकट ब्रजवासी हो, इस प्रकार का अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। भक्ति का अहंकार भी भगवान को पसंद नहीं है। और जब भी ऐसा अहंकार छोटी मात्रा में उत्पन्न होता है तो त्वरित भगवान उस भक्त का संग छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो अहंकार नष्ट हो, फिर मैं दोबारा उस भक्त के पास आऊं। तो भगवान सारे रूपों में अंतर्धान हो गए, सारे जितने भी अनंत रूप बनाए थे सब एक साथ अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, और सब गोपियां एक साथ अकेली हो गई। और सब गोपियां, अभी भी वो अहंकार का भ्रम था, वो सबको बता रही है पता है सबको छोड़ के कृष्ण मेरे साथ थे, लेकिन सभी गोपियों ने यही बताया कि सबको छोड़ के मेरे साथ थे। तो सभी गोपियों को ये अनुभूति हुई कि वो सबके साथ थे, कोई अहंकार करने की कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था, खाली हमको पता नहीं था कि सबके साथ हैं। तो हम कितनी मूर्ख हैं, हमने अहंकार किया और कृष्ण का जो व्यक्तिगत संग था वो सबको व्यक्तिगत रूप में प्राप्त हो रहा था, वो सबने खो दिया, एक कारण मैंने अहंकार किया। इसलिए आज भी ये सत्य है, अगर आज भी हम लोग में से कोई सोचते हैं कि मैं कोई विशेष भक्त हूँ, मुझ पर विशेष कृपा है, मुझे हमेशा विशेष माला प्राप्त होती है, मुझे सदैव कोई विशेष विशेष कृपा प्राप्त होती है, बिना प्रयास के पास मैं कुछ विशेष हूँ, उसी समय कृष्ण के पास से हम वंचित हो जाते हैं। वही वो क्षण है जिस जब समय आपको लगता है। हमें सदैव ये सोचना चाहिए कि कोई विशेष वगैरह कुछ नहीं है, ये सब बिना कारण की कृपा हो रही है, बिना योग्यता की, बिना किसी कारण से ही कृपा, उसको कहते हैं कॉजलेस मर्सी, अकारण कृपा कहते हैं उसको, क्योंकि कोई योग्यता नहीं होती है, देने वाले की इच्छा होती है कि इसको दी जाए, कोई कारण नहीं उसका, कोई योग्यता, कोई पूर्व कर्म, कोई पुण्य कर्म कुछ नहीं होता है उसके अंदर। इस भावना में हमको सदैव चलना चाहिए, आई एम नथिंग स्पेशल, इनफैक्ट आई एम ऑलवेज एक्स्ट्रा एंड ऑर्डिनरी, मैं अति सामान्य व्यक्ति हूँ। और जैसे आप आगे बढ़ोगे भक्ति में, आपको ये हृदय से अनुभूति होगी कि आई एम टू ऑर्डिनरी अ पर्सन, मैं बहुत ही अति सामान्य व्यक्ति हूँ, कुछ भी असामान्य असाधारण वस्तु मेरे अंदर नहीं है। यह अनुभूति होना यह आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। इसलिए अगर कोई आपको कहेंगे ना प्रभु जी यू आर वेरी स्पेशल, आप बहुत स्पेशल हो, आप ऐसे हो वैसे हो, उसको सत्य मत मानना कभी, डोंट बिलीव इन इट। लोगों को कहने दो, उनको अच्छा लगे तो कहने दो, उनको बताओ ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कहने में आनंद आ रहा है बता दो, आप मत विश्वास रखो उस पर कि वो जो कह रहे हैं, देखो मैं अकेला नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सत्य हो सकता है, डोंट बिलीव इन इट। अभी गोपियां पछता रही है कि बेकार में हमने उसको सोचा कि हम कुछ स्पेशल हैं, नतीजा क्या है उसका, भगवान से जुदा हो गए, अच्छे खासे भगवान के साथ में थे, तभी रोने शुरू किया, सब मिलकर रो रही है, सब मिलकर एक साथ पश्चाताप कर रही है, ढूंढ रही है भगवान को, पत्तों को पूछ रही है, पेड़ों को पूछ रही है, बेलियों को पूछ रही है, कहाँ हो भगवान, कभी देखा है क्या, सबको पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। पेड़ों को बोल रही है कि आपको तो सब दिखता है, आप सबको जानती होंगी, तुम्हारे पास से ही गुजर गए होंगे, बताओ कहाँ हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठाकुर जी कहाँ चले गए, ठाकुर जी भी क्या अच्छा नहीं लग रहा है, जब हमको अहंकार होता है तो हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन हमसे दूर होकर उनको आनंद नहीं आता है, उनको बड़ा दुख होता है कि क्यों मेरा भक्त ऐसी भावना को अपना रहा है, मैं चाहता हूँ उसके संग में रहूँ, वो अपनी भावना से मुझे ठुकरा रहा है, एक तरह से अहंकार जो है ना वो भगवान को ठुकरा देता है, तो भगवान भी विरह में आ जाते हैं। तो भगवान को गोपियों में बड़ा प्रेम है, तो वो जाकर ही जंगल में बैठ जाते हैं, जमुना किनारे, जमुना किनारा बड़ा विस्तारपूर्वक है, एक ही किनारा नहीं है, पूरा ब्रज जो है जमुना किनारा है, तो एक अलग जगह पर आकर बैठ जाते हैं जमुना किनारे पे, और फिर वो राधा रानी के प्रेम पर ध्यान करना आरंभ कर देते हैं। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो, हाँ, कालिंदी के तट पर जो कुंज मंदिर है उसमें बैठे हुए हैं, पद्मासन लेकर, नेत्र बंद किए हुए हैं, हाथ ऐसे कमल भाव कमल मुद्रा में रखे हुए हैं, और मुख से राधे राधे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो जग रहे हैं वो बोलेंगे राधे राधे, और मुख से राधे राधे बोल रहे हैं, और हृदय के आंगन में राधा रानी के चरणों पर ध्यान कर रहे हैं। बहुत दिव्य स्थिति है कृष्ण की, बहुत ही दिव्य स्थिति, स्वयं कृष्ण उसमें मग्न हो गए पूरी तरह से, मुख से राधा नाम उच्चारण और हृदय के आंगन में राधा पदों यानी चरण कमलों पर ध्यान कर रहे हैं। और इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, उनको अद्भुत अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ। और ये एक जगह पर घटना हो रही है, अकेले बैठे हुए रात का समय है, आनंद का अनुभव ले रहे हैं, उनको पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, रात का समय है कि दिन का समय है कि क्या हो रहा है, हवा चल रही है, जमुना जी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ब्रजभूमि कहाँ है, कुछ पता नहीं है। एक तुरिया अवस्था में थे, एक सूक्ष्म अवस्था में थे वो। और यहाँ पर सब गोपियाँ जो है ना वो भटक रही है वन वन में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीढ़ितम कल्मषापहम, गा रहे रो रो के पुकार रहे भगवान को, कहाँ हो भगवान कहाँ हो। और वहाँ करते करते वहाँ आ जाते हैं, अचानक देखते हैं अरे कोई कुंज में बैठा हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है, मोर मुकुट पहना हुआ है, सब कुछ हमारे कृष्ण जैसा है, पर रंग जो है वो गौर स्वर्ण वर्ण हो गया है। तो गौर स्वर्ण रंग वाला, मोर पंख वाला, पीताम्बर वाला व्यक्ति हमारे को उनको पता नहीं है, हमें सांवले रंग वाला, पीताम्बर वाला, मुरली वाला, मोर पंख वाला हम जानते हैं उसको, लेकिन ये व्यक्ति को उन्हें पता नहीं है। पूरी तरह से अनंत सूर्यों की कांति है, अंधारे में भी दिखाई पड़ रही है, गोल्डन कलर, स्वर्णमय कांति। तो कुतूहल हुआ, वो चर्चा करने लगे कौन है कौन है, तो कहते हैं कृष्ण है। अरे नहीं, कृष्ण कैसे हो सकता है, वो तो सांवले रंग का है, ये तो गौर वर्ण है, ये तो स्वर्णमय कांति है। ऐसे चर्चा करते 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 ये निर्णय हुआ कि राधा रानी आप ही जाके पता करो कौन है। तो राधा रानी आगे चली गई, अभी ये भाव में डूबे हुए हैं, गौर वर्ण प्राप्त किए हुए हैं। राधा रानी जाकर स्पर्श करती है पूछने के लिए, भाई तुम कौन हो। जैसे ही स्पर्श करते ना तो धीरे धीरे साम गौर वर्ण स्वर्ण कांति जो है वो जाने लगती है, और जो सांवला रंग है वो आने लगता है, ट्रांजिशन। फिर कुछ ही समय में गौर वर्ण पूर्ण नष्ट होता है और पूर्ववत कांति सांवले रंग की आ जाती है, और भगवान नेत्र उन्मीलन, नेत्र खोल लेते हैं और देखते हैं तो राधा रानी सामने खड़ी है, गोपियाँ खड़ी है, वो कुंज में बैठे हुए हैं, अपने आप को देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो राधा रानी पूछती है क्या हुआ, तो कहते हैं आप लोगों ने सब जो भी कुछ सोचा जिसकी वजह से मैं आपको छोड़ के यहाँ पर आया, लेकिन आपके विरह में मैं नहीं रह सका, आपका ही नाम उच्चारण करते हुए, आपके ही ध्यान में, आपके चरणों पर ध्यान करते हुए यहाँ बैठा रहा, तो मेरी ये अवस्था हुई। क्योंकि गोपियों ने बताया, उनको पता नहीं उनका, क्योंकि आंखें खोली तब तक उनका तो रंग वापस आ गया था, तो उन्होंने रंग जाने के बाद आंखें खोली, तो उनको पता नहीं क्या हुआ, देखने वालों को पता है क्या हुआ। तो राजा रानी ने बताया कि तुम्हारा तो गौर वर्ण स्वर्ण कांति, हमारे जैसा वर्ण आपका हो गया था। तो उन्होंने कहा ये मैं आपके चरणों पर ध्यान कर रहा था इसलिए हुआ, और मुझे उतने समय तक उतने कालावधि में इतना दिव्य आनंद प्राप्त हुआ कि मैंने अभी निर्णय कर लिया है कि मैं एक पूरा अवतार लूंगा इस बात को समझने के लिए। ये क्या रहस्य है जो तुम रोज अनुभव करती हो, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जब भी आपको देखता हूं तब आप मेरे संबंध में रहते हुए मुझसे अधिक ज्यादा आनंद का अनुभव करती हो। संबंध प्रेम का हमारा आपका है, मैं भी आप पर प्रेम करता हूं, आप पर मुझे प्रेम करती है, लेकिन मैं और आप जब एक दूसरे पर परस्पर प्रेम करते हैं तो मैं ये देखता हूं हमेशा, प्रश्न चिन्ह मन में उठता है कि आप ज्यादा प्रेम का अनुभव करती हो, और आप होने के नाते और मैं आप नहीं होने के नाते मुझे उस प्रेम का अनुभव नहीं होता है। आज मैं कुछ समय के लिए आप बना हुआ था, आप ही हो गया था, बस आप ही हो गया था, तो मुझे उस आनंद की कुछ झलक मिली कुछ समय के लिए, और मैं इतना विभोर हो गया, मैं स्वयं आनंद का सागर हूँ, आनंद का सागर मुझसे निर्माण होता है, लेकिन मुझे भी ये अद्भुत आनंद का परिचय पहली बार हुआ आज, जो मैंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। बड़े रहस्य की बात है ये, आनंद घन, आनंद का उगम, आनंद का सागर, भगवान जो है स्वयं, वो स्वयं ये आश्चर्यचकित होकर ये वक्तव्य कर रहे हैं। पहली बार आज मैंने उस आनंद को कुछ समय के लिए अनुभव किया, और मैं उसको अनुभव करने से इतना विभोर हो गया हूं और इतना लालायित हो रहा हूं अभी कि आपने मुझे छूकर उस आनंद का समाप्त कर दिया, उसको आपने स्पर्श करके मेरे उस आनंद के लहरों को आपने बंद कर दिया और दोबारा मुझे मैं बना दिया, आपसे मैं बना दिया। अब मैं आपका भाव लेकर हृदय में ग्रहण करते हुए एक पूरा अवतार लूंगा, और पूरे उस अवतार में जो आनंद का सागर का अनुभव आप, जो अलग आनंद है जो मैं नहीं कर सकता, उसी आनंद का अनुभव करूंगा पूरे अवतार में। इस समय उन्होंने स्वयं घोषणा की। तो राधा रानी सुन रही है, देखो प्रेम कैसा होता है। कोई भी बात सुनने के बाद ना, जिस पर प्रेम कर रहे हैं उसके हित का विचार मन में आता है। माँ कैसे रहती है, माँ मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अभी मैं अमेरिका में रहूँगा, तुम्हारा बोले कहाँ खाओगी, कहाँ रहोगे, ट्रैवलिंग कैसे करोगे, साथ में कौन रहेगा, आप कॉलेज में कैसे अकेले जाओगे, ये नहीं सोचती है कि मेरा क्या होगा आपके विरह में। वो तो बाद में सोचेगी जाने के बाद, लेकिन पहले क्या सोचती है, उसका कल्याण कैसे होगा, उसका हित कैसे होगा। उधर बुखार आ गए तो अरे कौन सी दवा ले रहे हो, ये ले लो वो ले लो, वो दुकान तो किसको बोलो, फ्रेंड को आ जाओ घर पे। यानी जिस पर प्रेम करते हैं उसके बारे में कितना सोचता है प्रेमी व्यक्ति। तो राधा रानी क्या सोच रही है, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, आपको इस अच्छा आनंद का अनुभव होगा, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, वो सोच रही है जैसे ही आप मेरे भाव को स्वीकार करोगे आपकी अवस्था बहुत बुरी हो जाएगी। कैसे, आनंद बहुत मिलेगा लेकिन आपको भान नहीं रहेगा कि आप पत्थर में चल रहे हो, कांटों में चल रहे हो, कंकड़ में चल रहे हो, शिला में चल रहे हो, नदी में चल रहे हो, पेड़ पे चल रहे हो, क्योंकि वो पेड़ पे भी चलते थे गौचारण में, उनको आदत है, शाखा में चलकर गौचारण करते थे, नीचे गाय चल रही है, तो आप गिर जाओगे, इतना भाव विभोर हो गए, अपना होश नहीं रहेगा, आपको अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो फिर आप जब गिरोगे तो आप जख्मी हो जाओगे, आपको वेदना होगी, पीड़ा होगी। तो वो सोचकर वो परेशान हो गए, रोने लगी वो। उन्होंने कहा अगर आपने निश्चय कर ही लिया है, क्योंकि आप हमारे भाव को झेल नहीं पाओगे, आप भाव विभोर हो जाओगे, इसलिए जब भी आप आओगे उस अवतार को लेकर तो मैं मेरी कांति जो है ना, पूरी कांति उससे आपको ढक दूंगी, आई विल कवर यू विथ माई कम्प्लेक्शन, ताकि आप कहीं भी गिरोगे कंकड़ कंकड़ में कांटों में तो जख्मी नहीं होंगे, क्योंकि मुझे आपको उस जख्मी अवस्था में देखने के लिए मेरी मेरी सहनशीलता नहीं होगी, आई विल नॉट बी एबल टॉलरेट, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी आपका वो दृश्य कि आप मेरा भाव लेकर भाव विभोर हो रहे हो और गिर रहे हो और अपने आप को बेहोश होकर कहाँ कहाँ जख्मी कर रहे हो। ये दूसरा इतिहास है। इसलिए एक कारण है कि चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण वर्ण क्यों है, एक कारण है कि अंदर से राधा रानी का भाव स्वीकार किया है, यानी को हमारा अस्तित्व का सार क्या है, हृदय है जो अविरत चलता है, वो आपके जीवित होने का एक लक्षण है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आप लोग मुर्दा है कि जिंदा है देखने के लिए पहला उधर हार्ट पे लगाते हैं स्टेथोस्कोप, नहीं अभी भी जिंदा है, अभी कुछ करो उसको और जगह बनाने के लिए। तो हृदय जो है, हृदय का अस्तित्व है वो हमारे पूरे अस्तित्व का एक सार है, और वहीं पर उन्होंने, जहां पर आत्मा निवास करती है, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति है ना, वो जहां आत्मा निवास करती है वो हृदय है, जो हमारे अस्तित्व का सार है, फाउंडेशन है, उसमें ही राधा रानी का भाव स्वीकार किया उन्होंने। और जैसे हमारा हृदय होता ना वैसे हम दिखते हैं, हमारे हृदय में कपटी भाव है वो चेहरे में भी आ जाता है, हमारे हृदय में प्रेम का भाव है, वात्सल्य का, करुणा का भाव है, सेवा भावी भाव है, तो वो भाव तुरंत हृदय में आता है, हृदय आनंदी है तो चेहरे पे आनंद दिखाई पड़ता है। हृदय का जो भाव है उसका हमारा चेहरा और हमारा शरीर एक प्रतीक है, प्रतिबिंब आता है, चेहरा ज्यादा प्रधान है लेकिन हमारा शरीर भी है उसके अनुसार कार्य करता है, जिस प्रकार से हमारा भाव होता है। तो हृदय में राधा रानी जाकर बैठी हुई है भाव रूप में, तो एक कारण वो है स्वर्ण कांति का, और बाह्य रूप से भी राधा रानी ने अपना चक्कांति जो है उससे कृष्ण को ढके रखा है, दोनों तरफ से अंदर अंतर बाह्य उनका रंग स्वर्ण है। ये गौरांग महाप्रभु का ये रहस्य है, राधा कृष्ण सुवलितम। हाँ, ये भगवान पहले एक ही थे लेकिन लीला के लिए दो हो गए अनंत काल के लिए, और दो में ही प्रेम होता है, तो दो हो गए प्रेम के लिए और अनंत विस्तार किए प्रेम के लिए, लेकिन दो तो रहे वैसे ही, फिर भी लीला के लिए ही एक समय पर दोनों एक हो गए। राधा रानी ने कृष्ण में प्रवेश किया भाव रूप में। देखिए राधा रानी का प्रवेश करने का जो शक्ति है ना वो कितनी गहरी है। देखो आप, कृष्ण सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, सर्व नियंत्रक है, क्या नहीं है कृष्ण, एवरीथिंग इज कृष्ण, बट उनको भी प्रभावित करने वाली एक ही व्यक्ति है, वो राधा रानी है। उनके क्या कहते हैं उसको, चर्या, चर्या यानी स्वभाव, मति को बदल सकने वाली एक ही व्यक्ति राधा रानी। कैसे है वो? परित्राणाय साधु नाम, उनका एक गुण है ना, वो साधुओं का वो बचाते हैं और राक्षसों को मार देते हैं। विनाशाय च दुष्कृतान, लेकिन सीता देवी कहती है उनको राम अवतार में, कभी कहती है जब भी उन्होंने 14,000 राक्षसों को 45 मिनट्स में मार डाला दंडकारण्य में, 45 मिनट में ऐसे गति से, जैसे हमारा पंखा तो आपके पास इधर चल रहा है, दिखता है क्या उसके अंदर कितने पत्ते? नहीं दिखते आपको, क्या दिखता है? एक धुंधला सा एक चक्र है, वो इतने फास्ट पत्ते घूम रहे हैं कि आपको पत्ते दिखते ही नहीं है, आपको खाली हवा आती दिखती है और एक ऐसा धुंधला सा चक्र दिखता है। वैसे प्रभु रामचंद्र कभी बाण निकालते, कभी प्रत्यंचा चढ़ाते, कभी खींचते, कभी छोड़ते, कभी निकालते, ऐसा एक चक्र था वो पूरा। शूर्पणखा बता रही है कि कैसे वो बाण निकाल रहे थे, कैसे मार रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस बाण निकल रहे धनाधन, और 14,000 सैनिक जनस्थान में धराशायी हो गए। 3 सेनापति खर, दूषण और त्रिशिर, आपके भाई सब खर, हमारे भाई सब नष्ट हो गए इतनी गति से। सुसीता देवी कहते हैं कितने क्रूर हो आप, आपके बाण मारने में कुछ विश्राम भी नहीं, बीच में इतना क्रूर बनो आप? मैं जानती हूँ आप राक्षसों का बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो मैं हूँ, मैं देख नहीं सकते इतना बड़ा संगार इतनी गति से कर रहे हो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार जो है ना वो शस्त्र नहीं लेके आऊँगा मैं, बिना शस्त्र के आऊँगा। तो अगले शस्त्र में ब्रज में जन्म लिया, अगले अवतार में। तो ब्रज में कोई शस्त्र लिया था उन्होंने क्या? नहीं लिया ना उन्होंने, फिर भी मारने का काम नहीं छोड़ा। अभी कहने का प्रभाव क्या है? कहने में भी शक्ति है, कहने का प्रभाव यह है कि बिना शस्त्र के बालक बन कर आए, लेकिन क्या किया, किसी के मुंह में हाथ डाला तो वो मर गया, कि शरीर में घुस के बड़े हो गए तो मर गया, किसी को खाली पैर लगा दिया वो गिर गया, किसी का स्तन चूसा वो मर गई, किसी का चोच फाड़ दिया, अस्त्र नहीं लिया, शस्त्र नहीं लिया, मैंने कहा था ना नहीं लिया। लेकिन राधा रानी कहती है बहुत क्रूर हो तुम, फिर भी मारते रहते हो। तो उन्हें कहा मैं अगले अवतार में कुछ भी नहीं लूंगा और मारूंगा भी नहीं। ये कैसे परिवर्तन हुआ पता है आपको? जिनको सदैव परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतान करने की आदत है, उनकी आदत कैसे बदली? जब राधा ने भाव रूप में प्रवेश किया ना तो वो पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। आतंकवादी बहुत मिले उनको, ऐसे नहीं नहीं मिले, उसे बढ़िया आतंकवादी मिले। वो जो थे ना रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र, वो भी आए थे उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु के समय, जगाई मदाई बनकर। क्या कहें आपको, वो दोनों मिलकर एक दिन में इतने पाप करते थे कि उस समय विश्व में जितने लोग थे वो सब मिलकर पूरे जीवन भर में नहीं कर सकते थे, उतना पाप वो एक दिन में करते थे। मेरे को अभी भी समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शास्त्र में लिखा है। हम जैसे लोग अपनी पूरी कैपेसिटी में पाप करना चाहते हैं, ऐसे कैपेसिटी में पूरे जीवन भर के काल में मिलकर जितना पाप नहीं कर सकते हैं उतना वो दोनों मिलकर एक दिन में करते थे, हर प्रकार के पाप। तो आपको अगर ऐसा कोई व्यक्ति सामने ऐसा आया और आप बलवान हो, आप उनको दंड दे सकते हो, बाकी लोगों को उनके आतंक से बचा सकते हो, ऐसे आप अंदर अगर क्षमता होगी तो आप जरूर उसको करेंगे, समाज कल्याण के हेतु करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति उनकी है, वो स्वयं कृष्ण है, वो कभी भी चक्र को बुला सकते हैं, बुलाया था उन्होंने, लेकिन उनसे बढ़कर भी कोई निकला करुणा वाला नित्यानंद प्रभु। तो उनको उन्होंने ना बिना शस्त्र से माफ कर दिया पूरा। और माफ क्षमा करना भी एक चीज है, ठीक है भाई तू जा निकल अभी, गेट आउट फ्रॉम हियर, मैं क्षमा करता हूँ, चला जा यहाँ से, ये एक तरीका है। आपने भयंकर पाप किया है और आपको क्षमा प्राप्त होती है, आप आनंद है क्षमा हो गई मेरी, सब फ्री हो गया मैं, लेकिन वहां तक नहीं छोड़ा उन्होंने। राधा रानी का हृदय में प्रवेश करने का परिणाम क्या है देखो आप, विचार करो उसके ऊपर। उन लोगों को तत्क्षण पाप मुक्ति देकर उसी क्षण में कृष्ण प्रेम में भाव विभोर कर दिया, उसी क्षण वो नाच रहे हैं प्रेम से विभोर होकर। सारा विश्व परेशान है, अरे जगाई मुदाई कैसा नाच रहे हैं ये, हाउ इट इज पॉसिबल, कल तक तो रेप करना, जला देना, घरों को भस्त कर देना और मर्डर कर देना और क्या क्या करते थे वो, और एक एक क्षण के अंदर जैसे ही महाप्रभु ने गले लगाया तो इतना परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जिनकी प्रवृत्ति वध करने की है दुष्कृतों की, उनके अंदर भी राधा रानी बैठी है जो परम 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 करुणा करने वाली है, उनके करुणा का कोई था नहीं है। ये परिणाम है राधा रानी का। तो गौरांग महाप्रभु कौन है? वो राधा रानी है। गौर लीला क्या है? राधा रानी की लीला है वो। चैतन्य चरितमृत क्या है? सब राधा रानी का प्रताप है वो सब। कृष्ण पुरुष रूप में आकर वो राधा रानी का लीला विस्तार कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से जब चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे ना आप इस रहस्य को जानते हुए, तो आपको पता चलेगा कि राधा रानी के प्रेम में और करुणा में कितनी शक्ति है जो कृष्ण को भी परास्त कर सकती है, कृष्ण को भी एक अलग व्यक्ति बना सकती है। कृष्ण भी भूल जाएंगे मैं कौन हूं और क्या हूं, और दुख नहीं करेंगे अरे मैं क्या था और क्या हो गया, आनंद करेंगे अनुभव, अपने आप को सोचेंगे कि मैं ऐसा ही रहूं, दोबारा कृष्ण और वराह देव और वामन देव नरसिंह देव बनकर नहीं आऊं, यही अच्छा है। सब पर करुणा करो, शस्त्र का जरूरत नहीं है, अस्त्र का जरूरत नहीं है, भक्तों को लेकर आओ सांगो पंगास्त्र, हाँ संग और उपांग जो भक्त है वही मेरे अस्त्र हैं, उन्हीं के साथ सबका उद्धार करना है, किसी को दंड देना नहीं है, सब पर कृपा करनी है, केवल क्षमा नहीं करनी है, कृष्ण प्रेम में सबको नहलाना है, आनंद विभोर करना है, सबको विश्व को आनंद में डुबो देना है, बस बढ़िया बात है एकदम। चलता रहे महाप्रभु का अवतार अनंत, राधा रानी का प्रभाव है ये रहस्य है इसका। अभी ये संतों की कृपा से समझ में आता है, आम जनता में कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कौन है चैतन्य महाप्रभु। वहां पर भी लोग ये सोचते थे उस समय कि एक व्यक्ति पागल होकर नाच रहा है, सब संत लोग जो है ना वो क्या कहते हैं उसको मायावादी सन्यासी लोग कहते हैं पागल हो तुम, हमारे पास आके शास्त्रार्थ करो, वेद पढ़ो, मति को स्थिर करो, ये सब भावुक लोगों का काम है, जाकर नित्य करना रोना बहना सब ये भावुक लोगों का काम है, आप हमारे साथ बैठ के शास्त्रार्थ करो। तो क्या कहते हैं, मैं भी मेरे गुरु के पास गया था, तो मैं बहुत बुद्धू आदमी हूँ, मुझे कोई बुद्धि नहीं है, तो मेरे गुरु ने जवाब दिया हाँ तुम मूर्ख नंबर वन हो, तुम केवल नृत्य करो हरिनाम करो और डांस करते लोगों को मिलते रहो बस। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे पास कोई गुण नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मेरे लिए क्या उद्धार करने का तरीका है, मेरे गुरुजी ने बताया डांस करो हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी हैरान हो गए क्या बताए भाई, हम लोग बैठे हुए सिखाने के लिए फिर सीखने को तैयार नहीं, और कुछ ही क्षणों के बाद में, कुछ ही मिनटों के बाद में, कुछ ही समय के बाद में उनके जैसे ही बने। बड़े बड़े सरस्वती, बड़े बड़े भारती, बड़े बड़े सन्यासी टाइटल लिए हुए हाँ नाच रहे हैं। वो ब्रह्मानंद भारती थे एक, बहुत बुजुर्ग थे वो, और एक थे कौन, सार्वभौम भट्टाचार्य, बृहस्पति के अवतार थे वो, वैसे भी विद्वान और ऐसे भी विद्वान, अवतार लेने के बाद भी पूरे विश्व में खाती थी उनकी, नंबर वन के टॉप मोस्ट पंडित थे वो, और वो इंद्रधनुष सरोवर में क्या कर रहे हैं, भगवान के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, भगवान उन पर पानी फेंक रहे हैं, और सब रूप गोस्वामी संत गोस्वामी संत लोग क्या कह रहे हैं, देखो देखो सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप पुत्र के राजगुरु हैं, ये राजा प्रताप पुत्र के इतने बड़े राजगुरु, इतने सम्माननीय व्यक्ति, इतने गंभीर शास्त्रार्थ करने वाले पंडित, शास्त्र के सागर है पूरे पंडित, इतने बड़े आदरणीय, वो बालक बनकर खेल रहे हैं पानी में, पानी उछाल रहे हैं। तो क्या जवाब मिला उसका, हाँ जब महाप्रभु चैतन्य की कृपा होती है ना किसी ऊपर तो ऐसे ही बालक बन जाता है व्यक्ति, सारा प्रौढ़त्व सारी बुद्धि और सारा शास्त्रार्थ का साक्षात्कार सब नष्ट हो जाता है, वो सब प्रेम में बह जाता है, पूरा आंसुओं में सब बह जाता है, सारा पांडित्य बह गया उनका। महाप्रभु को मिलने के बाद क्या हुआ, महाप्रभु 5 बजे उनके घर पे गए, ये अंतलीला की बात है, और उन्होंने जगन्नाथ का महाप्रसाद दिया उनको, और ये भी बिस्तर से उठकर खटखटाया ऐसे उत्सर के कौन है करके गए, मतलब मुंह नहीं धोया था, स्नान नहीं किया था, कुछ शौच नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, तो महाप्रभु ने उनको महाप्रसाद दिया, ये जगन्नाथ का महाप्रसाद, वो तुरंत खा लिया उन्होंने। तो महाप्रभु कहते हैं अरे कुछ मुंह नहीं धोया, कुछ स्नान नहीं किया, कुछ आचमन नहीं किया, यात्रा नहीं अपना गायत्री नहीं जप किया, कुछ नहीं किया आपने, तो ये कहा उन्होंने कि जब महाप्रभु की मिलन होता है तो सारे नियम टूट जाते हैं, क्योंकि बड़ा नियम सबसे क्या होता है, सबसे बड़ा नियम क्या है, जब भी महाप्रसाद हमको प्राप्त होता है, आप शुचि हो अशुचि हो, पवित्र अवस्था में हो अपवित्र अवस्था में हो, गंदी अवस्था में हो, स्नात हो या अस्नात हो, जैसे भी हो आप, त्वरित महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये नियम का पालन बराबर किया उन्होंने और यही सर्वोच्च नियम है। देखिए ये परिवर्तन होता है जब महाप्रभु का स्पर्श होता है किसी को, वाणी से, संग से, शरीर से, आलिंगन से, किसी भी रूप में हो। ऐसे महामहारथियों का सब परिवर्तन कर दिया उन्होंने। प्रकाशानंद जी को उन्होंने 60,000 अपने मायावादी शिष्यों के साथ में दीक्षा लिया उन्होंने, एक साथ में बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़ा परिवर्तन उस काल में हुआ था। इतने बड़े प्रकाशानंद सरस्वती थे, उनको परावर्तित करने के लिए आए थे, खुद परावर्तित हो गए, परिवर्तित हो गए। ये क्यों हुआ सब? जब राधा रानी का भाव कृष्ण स्वीकार करते हैं तो उनकी ये स्थिति होती है। अपना भी कहा हुआ शास्त्र बोल जाते हैं, विनाशाय दुष्कृतान्, अपना ही शास्त्र कहा है उन्होंने। क्या कहा है? सर्वधर्मम परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। हमको लगेगा हो गया सब कुछ, अभी इतना सब किया तो सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। यानी क्या कहते हैं? पापों से मुक्ति दिला दूंगा, आगे ज्यादा मत अपेक्षा करना, ठीक से पढ़िए, डोंट वरी, पापों से मत डरना, मैं पापों से मुक्ति करूंगा, मोक्ष इच्छामि मैं करूंगा, प्रेम इच्छामि मा शुचः कहा गया, मैं आपको प्रेम दूंगा। तो महाप्रभु के रूप में वो अपने द्वारा नियम दिए हुआ नियम को तोड़ रहे हैं। कृष्ण के रूप में बहुत सख्त हैं वो, किसी को ज्यादा फेवर नहीं करते हैं, बहुत धूर्त प्रेमी है वो, हाँ श्रूड लवर, केवल वृंदावन में जन्म लिए हुए और उसमें भी गाय को नहीं, माँ को नहीं, पिताजी को नहीं, बैल को नहीं, सखाओं को नहीं, केवल गोपियों को, उस गोपियों में से चुने हुए गोपियों को ही वो रात में प्रवेश देते हैं रासलीला में। आप सोचो जरा, सभी गोपियों ने रास नृत्य नहीं किया है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा, सभी गोपियों को रास में प्रवेश नहीं मिला है। जो गोपियां पूर्णता से विश्व की भावनाओं से मुक्त थी, विरक्त थी, उन्हीं को प्रवेश मिला है। ऐसे गिने चुने प्राइवेट लिमिटेड कृष्ण जो है अभी सबको कृपा दे रहे हैं, क्योंकि वो स्वभाव राधा रानी का है। पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थाने, स्वभाव राधा रानी का है। रोज जब प्रवेश करती है तो कृष्ण जैसे प्रभावी व्यक्तिमत्व में भी अंतर आ जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का इतिहास है। और एक दो इतिहास बताता हूँ आपको, बड़ा ना आनंद आता है। महाप्रभु जी का जो अस्तित्व है ना, वो बड़ा आनंददायी है। एक भक्त था जो कोलद्वीप में था, बाद में उसका नाम पड़ा कोलद्वीप, लेकिन वो एक द्वीप है नवद्वीप का। सत्ययुग में वो एक पहाड़ है, वहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ है, इसका नाम पड़ा कोल पहाड़, कोलगिरी, कोल यानी सुअर यानी वराह। तो वो पहाड़ में रहते हुए वो व्यक्ति, उसका नाम था वासुदेव, वो वराह देव का पूजन करता था। हम लोगों को लगता होगा कि अरे खाली कृष्ण की भक्ति करते हैं, इस सृष्टि में हर एक अवतार के करोड़ों भक्त हैं, वराह देव के हैं, अलग अलग भक्त हैं, कुकुर्मा अवतार के हैं, मत्स्य अवतार के हैं, वामन अवतार के भक्त हैं, हर एक अवतार के अपना अपना समुदाय है, अपना एक लोक है, उस लोक में सारे भक्त रहते हैं और वो भगवान के अवतार की सेवा करते रहते हैं। तो वैसे ही ये वराह देव का भक्त है, वराह देव का पूजन कर रहा है और इतना कठोर पूजन कर रहा है, रो रहा है, उपवास कर रहा है और कह रहा है भगवान को, भगवान आप मुझे दर्शन दो, आपका दर्शन नहीं हुआ तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। ठाकुर जी भी बड़े व्याकुल हो गए, यानी वराह देव। वराह देव ने एक दिन उनको दर्शन दिया, बड़ा सुंदर दर्शन था वो। हमारे मन में वराह की एक ही कल्पना है, गंदी गचड़ कीचड़ गटर, ये विष्ठा खाना बना सब, वो हमारे मन में एक कंडीशनिंग है, हमारी बद्धता है विचारों की। लेकिन भगवान भी जब वराह बनते हैं तो वराह भी बहुत सुंदर होता है। तो इतना सुंदर वर्णन दिया है, कैसे माला पहने हुए थे, कैसे उनके तो टस्क थे, दांत चुभार आए हुए थे, कैसे बहुत सुंदर दर्शन का वर्णन दिया, उनके कमल नयन थे, गदा थी हाथ में उनके, कमलों की माला थी। और फिर ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। और कहते हैं भगवान को कि यही वो पहाड़ है जिस पहाड़ पर हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं प्रकट हुआ था। ये मैं बता रहा हूं आपको, यही जगह है वो जहां पर मैं प्रकट हुआ था सत्ययुग में। और मैं आपको ये वरदान देता हूं कि जहां पर आप रह रहे हो ये पर्वत जो है ये गोवर्धन से अलग नहीं है, साक्षात गोवर्धन भी है और यहीं पर मैं निवास करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य में, आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूं, मैं भविष्य में इसी नवद्वीप में अंतर्द्वीप में जन्म लूंगा और हरिनाम संकीर्तन करके केवल नृत्य और गायन करके लोगों का उद्धार करके सबको कृष्ण प्रेम दूंगा और तुम भी उसमें अवतार लोगे। तो उसको ना आधा समझ में आया आधा समझ में नहीं आया। कृपा भी कैसे होती ना, सब कुछ झेलने की शक्ति नहीं होती है, कृपा हो रही है, हम इतने पात्र, हमारा इतना मड़ा नहीं है। तो वो भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन बड़ा प्रेमी भक्त था भगवान का। बच के मैंने बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, बहुत पंडित था, शास्त्र का संशोधन किया और सब जगह पर ढूंढ के निकाला कि हाँ कलयुग में ठाकुर जी इस अद्भुत रूप में आने वाले हैं। सब साधुओं ने इसके बारे में उल्लेख तो किया है लेकिन गुप्त रूप में किया है, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके समझ में आएगा, संकेत किया उसके अंदर, साक्षात बात नहीं की है, लेकिन ये बड़ा बुद्धिमान और शुद्रदेही व्यक्ति था, सारे संकेतों को समझ गया और बड़ा आनंदी हो गया। लेकिन भगवान ने कहा था किसी को बताना नहीं, तो किसी को बताना भी नहीं पाया और फिर उसने जन्म भी लिया। और कहते जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था उस समय ये व्यक्ति ब्राह्मण बन के वहाँ उपस्थित था, देखा उन्होंने अपने भगवान को, फिर आके चिंतन किया अपने घर पे आके, तो उसको ये साक्षात्कार हुआ कि यही मेरे भगवान हैं जो जगन्नाथ मिश्रा के आंगन में जन्म लिए हुए हैं। लो गौरांग महाप्रभु की, ये एक इतिहास हो गया। फिर आप त्रेता में आइए, त्रेता में कहते हैं कि भगवान दंडकारण्य में जब वनवास का अनुभव कर रहे थे तो वहां से, कैसा लिंक है मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, लेकिन वहां से वो मोदद्रुम द्वीप गए। नवद्वीप में एक द्वीप है मोदद्रुम द्वीप, यानी मामगाची कहते हैं उसको आज के तारीख में, बांग्ला में मामगाची कहते हैं, लेकिन मोदद्रुम यानी आनंद देने वाला वृक्ष, मोद यानी आनंद और द्रुम अर्थात वृक्ष, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे प्रभु रह रहे थे कुटी पे, राम लक्ष्मण सीता। अच्छा मोद यानी मोद आनंददायी आनंद अनुभव था उनका, वहां पर शांत वातावरण था, एकांत था, वन था, सब प्रकार की फल फूल की कंदमूल की व्यवस्था थी, बड़ा शांत समय था, कोई राक्षस नहीं था। तो सीता जी, प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, ऐसे कई प्रसंग आते हैं रामायण में, और प्रभु रामचंद्र जो है ना वो सस्मित उनका चेहरा है, यानी मुख में स्मित हास्य है उनके। सीता देवी बड़े कुतूहल में आ गई, प्रभु आप क्यों स्मित हास्य कर रहे हैं? तो सीता देवी को प्रभु कहते हैं कि मुझे मेरे आने वाले अवतार के बारे में विचार मन में आ रहे हैं। तो कौन से अवतार का विचार? कि कलयुग में मैं यहाँ पर जन्म लूंगा, मेरे पिता दशरथ और मेरी माता कौशल्या यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के रूप में जन्म लेंगी, उनके पुत्र के रूप में मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में जन्म लूंगा और पूरे नवद्वीप को मैं आनंद के सागर में डुबो दूंगा, सारे लोग मेरे साथ कीर्तन करेंगे, मैं कीर्तन करूंगा, नृत्य करूंगा और जहां जहां जाऊंगा लोग प्रेम भक्ति में पागल होकर, विभोर होकर बेहोश हो जाएंगे और सबका मैं कल्याण करूंगा। ऐसा बड़ा बहुत ही उत्साहवर्धक वर्णन करते ठाकुर जी। अचानक कहते हैं फिर मैं विवाह करूंगा, मेरी दो पत्नियां होंगी, तुम मेरी पत्नी बनकर आओगी, विष्णु प्रिया बनकर आओगी। पहली पत्नी जो थी वो लक्ष्मी का स्वरूप थी और आप मेरी दूसरी पत्नी के रूप में आओगी और 24 साल के उम्र में आपका विवाह करने के पश्चात मैं आपको छोड़ के संन्यास लेकर चला जाऊंगा। अभी तो इतना बढ़िया वर्णन कर रहे, अचानक इतना भयंकर वर्णन क्यों किया आपने? क्यों आप मुझे कष्ट देंगे? क्यों मैया को पुत्र विरह देंगे? क्यों बाबा, बाबा तो गुजर जाएंगे लेकिन मैया को पुत्र विरह देंगे और मुझे आप पति विरह देंगे? क्यों ऐसा कठोर कार्य कर रहे हैं आप? प्रेम देना है तो प्रेम दीजिए। तो ना प्रभु रामचंद्र ने मोदद्रुम द्वीप में उस पेड़ के नीचे बैठकर सीता जी को प्रेम का रहस्य समझाया है कि देखो सीता देवी, प्रेम के दो प्रकार होते हैं, एक है संयोग प्रेम और एक होता है वियोग प्रेम, जिसको विप्रलंब भी कहते हैं। संयोग प्रेम में मैं भक्तों के साथ में रहता हूँ और भक्तों से मेरी आसक्ति उनकी मेरी आसक्ति हो जाती है, उनको उनको मेरे साथ आसक्ति हो जाती है, मेरी उनके साथ हो जाती है और दोनों बड़े आनंद का अनुभव करते हैं भक्त और मैं। फिर वो आसक्ति के बल पर मैं उनसे अलग हो जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ और दूर होने के बाद में मैं सबके हृदय में भाव रूप में प्रवेश करता हूँ। जब मैं उनके साथ रहता हूँ तो मैं और वो अलग रहते हैं, मैं अलग वो अलग, वो अलग व्यक्ति है मैं अलग व्यक्ति हूँ। विरह होने के बाद मैं उनके हृदय में प्रवेश करता हूँ, यानी हजारों लाखों नवद्वीप वासियों के लिए एक गौरांग महाप्रभु हैं, है ना, हजारों लाखों करोड़ों गोपियों के लिए ब्रजवासियों के लिए एक श्याम सुंदर हैं। लेकिन जब मैं चला जाता हूँ तो मैं हर एक वो ब्रजवासी नवद्वीप वासियों के हृदय में प्रवेश करता हूँ, तो हर एक व्यक्ति को अकेले अकेले अलग अलग मेरा संग प्राप्त होता है हृदय में, हृदय से संग बाहर से विरह विरह, और अति अति उत्कट आनंद का अनुभव होता है और वो आनंद जो है वो परम कृपा की प्राप्ति है और वो मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये लीला करूँगा। तब सीता जी को समझ में आया, बोले ठीक है। तो जब भगवान चले गए वृंदावन छोड़कर मथुरा, तो कहाँ क्या हो गया, वृंदावनम एकम पादम न गच्छति, पादम एकम न गच्छति, तो गया कौन फिर बाहर, और जो नहीं गया वो कहाँ गया, अगर नहीं गया तो किधर गया वो, और गया वो तो मथुरा गया और कंस का वध किया। तो वो जो कृष्ण थे वो दो प्रकार के कृष्ण हैं, एक ऐश्वर्य वाले कृष्ण जो देवकी के गर्भ में आए थे, और एक है यशोदा नंदन कृष्ण, नंदलाल कृष्ण, तो यशोदा के गर्भ में आए थे, अलग अलग उनकी गर्भावस्था हुई है, दो जगह पर अलग भगवान ने प्रवेश किया है, और एक ऐश्वर्य वाले हैं और एक है माधुर्य वाले, माधुर्य कृष्ण। और क्या देखते हैं हम लोग, देवकी वाले कृष्ण को लेकर आए वसुदेव, और कहाँ रखा, यशोदा की गोद में रखा। यशोदा ने भी उस समय एक लड़का और एक लड़की, एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया था, ये भी एक रहस्य की बात है, रुद्रयामल ग्रंथ में लिखी है कि यशोदा को ट्विन्स हुए थे, उसका भी इतिहास है। भगवान ने वादा किया था जब तुम संकर्षण करके बलराम जी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित करोगी तो तुम मेरी बहन बन जाओगी, संकेत किया है। तो योग माया और कृष्ण यशोदा के गर्भ में दोनों ने गर्भावस्था प्राप्त की थी, और यहाँ पर अलग अनंत शेष आए पहले, फिर वो जाके विलीन हो गए रोहिणी के गर्भ वाले बलराम में। यानी दोनों जगह पर ऐश्वर्य वाले दो व्यक्ति, ऐश्वर्य वाले दो व्यक्ति माधुर्य व्यक्ति में प्रवेश कर गए, तो ऐश्वर्य कृष्ण यशोदा के कृष्ण में प्रवेश कर गए और अनंत शेष रोहिणी के गर्भ में जो बलराम थे वो प्रवेश कर गए। तो जब वो गए तो श्री कृष्ण जो माधुर्य कृष्ण है वो भाव रूप में सबके हृदय में प्रवेश किया उन्होंने, सब ब्रजवासियों के, और बाह्य रूप में ऐश्वर्य कृष्ण जो है वो आगे चले गए, उन्होंने फिर कंस का सबका वध किया, महाभारत का युद्ध कर आयोजित किया, सब कुछ जो लीला किया, द्वारका लीला, मथुरा लीला, हस्तिनापुर लीला, सब उस कृष्ण ने किए, और कृष्ण यहाँ पर भाव रूप में माधुर्य कृष्ण सबको उत्कट प्रेम का अनुभव देते देते 100 साल के ऊपर रहे वहाँ पर। ये सब रहस्य जो है प्रभु रामचंद्र ने सीता को समझाया, कितनी बढ़िया बात है। देखो ऐसा हमारा शास्त्र जो है ना, जो भगवान की लीला है ना, ऐसी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी, आप जितना जाओगे उतना गहरी है, कोई था नहीं नीचे, देयर इज नो एंड टू दैट। जितनी कृपा होगी उतना अनुभव प्राप्त होगा, और जितना प्राप्त होगा वो भी पर्याप्त होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जो प्राप्त है वो भी परिपूर्ण है, जो प्राप्त होते जाएगा वो भी परिपूर्ण होते जाएगा, वो पूर्ण है फिर भी अपूर्ण है, फिर भी अपूर्ण पूर्ण रहेगा और फिर भी पूर्ण ही पूर्ण रहेगा। कुछ समझ में आया आपको? तो ऐसा हमारे चैतन्य महाप्रभु का इतिहास है, सब प्रेम का इतिहास है, सब जगह घोषणा कर रहे हैं प्रेम देने के लिए आऊँगा, प्रेम देने के लिए आऊँगा, प्रेम देने के लिए आऊँगा। हमारा भाग्य है कि हमारे ही कलयुग में अभी अभी 550 वर्ष पहले वो आए थे। इसके बारे में एक बात आखिरी बताऊँगा आपको मैं, वो यह है कि हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते, तो कभी आते वो, एक जो कल्प होता है ना वो 4 युगों का बनता है, एक साइकिल, उसको दिव्य युग कहते हैं या कल्प कहते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली, और एक जब पूरा होता है चक्र तो उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे हजारों कल्प होते हैं, 1000 कल्प पूरे होते ना तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं। 1000 कल्प जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं, उसको 432 करोड़ साल लगते हैं। तो 999 जब ये कल्प होते हैं और 1000वां कल्प आरंभ होता है, तो 1000वें कल्प के द्वापर में कृष्ण स्वयं आते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, और उसके बाद वाले कलयुग में 1000वें कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये लीला साधारण नहीं है, हर समय होने वाली नहीं है, इतनी दुर्लभ है ये। इसका अर्थ ये हुआ कि 432 करोड़ साल हो चुके हैं और ये कलयुग आया है, तो महाप्रभु चैतन्य ने अवतार लिया है, और सौभाग्य है कि हमने भी उसी कलयुग में अवतार लिया है। आपको पता है जब यहाँ पर यज्ञ होता है ना, जब यज्ञ हो रहा है मंदिर में, तो यज्ञ का एक विशेष सुगंध आती है, पता है ना आपको, वो लकड़ी, वो गाय का गोबर का कंडा, गाय का बिलोना घी, उसमें आहुति जब अर्पण करते हैं ना, तो एक बहुत सुंदर सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है, पवित्र धुआं होता है वो जिसको उसको स्पर्श करता है ना, उसके सब पाप धुल देता है वो। उस धुएं में आंखों से पानी आएगा, लेकिन जब भी आपको स्पर्श होगा आपके अनंत कर्म धुल जाएंगे, सब पाप शुद्ध हो जाएंगे आप। और मंदिर में यज्ञ होगा और मंदिर के यहाँ से वहाँ से बाहर निकल के दूर दूर तक उसकी खुशबू आएगी आपको, सुगंध आएगा। और यज्ञ सुबह हो गया, कल भी हुआ था, लेकिन अभी भी उसका जो धुआं निकल रहा है कुंड से, उसका सुगंध जो है ना पूरी बिल्डिंग में कभी कभी आता है। हमारी बिल्डिंग में हम यज्ञ करते हैं ना, पूरे 7वें मंजिल तक उसकी सुगंध आती है और 2 दिन रहती है, और लोग पूछते हैं क्या हो रहा है, किधर कुछ यज्ञ हो रहा है। वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं ना, तो उनके आने की जो महक है वो सैकड़ों साल जीवित रहती है। हमारा यज्ञ तो इधर का ही है, निगड़ी के अंदर ही थोड़ा सुगंध आएगी उसको। महाप्रभु चैतन्य स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, प्रेम का संदेश लेकर, प्रेम का सागर लेकर आए हैं वो। तो वो आए थे 1486 में। आपको एक बात और बता दूं, उस समय तारीख क्या थी पता है आपको? 27 फरवरी, 27 फरवरी 1486 इस दिन महाप्रभु का अवतरण हुआ, नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हो गए वो। तो वो प्रकट होने के बाद में उन्होंने स्वयं एक वरदान दिया है कि मेरे जन्म से 10,000 साल तक ये आशीर्वाद लोगों को उपलब्ध रहेगा। उसको कहते हैं स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ कलियुगा। कलयुग जो है वो 432,000 साल का होता है, उसके 432,000 गिनती करेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1486 इसमें 27 फरवरी को महाप्रभु आए, उससे आप 10,000 साल जोड़ दीजिए, 1486 + 10,000 कितने हो गए, 11,4860 ऐसा ही कुछ है। उस साल तक महाप्रभु ने कहा है कि मेरे जन्म से 10 साल तक ये प्रभाव रहेगा, इसका परिणाम रहेगा, इसको सुगंध रहेगी, महक रहेगी, और उस पीरियड में जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का स्वीकार करेंगे वो व्यक्ति उसी जन्म में मेरे धाम को प्राप्त हो जाएंगे। इतने हल्की हरि बोल, आपको करना कुछ नहीं है, केवल स्वीकार करना है। पात्रता होगी नहीं होगी, पात्रे अपात्रे ना देखिला, निगड़ी मुंबई वृंदावन स्थाने अस्थाने ना देखिला, कहीं भी आप रहेंगे केवल महाप्रभु के द्वारा दिए गए उस संप्रदाय से, उस माध्यम से आप ये महामंत्र स्वीकार करेंगे, उसका ध्यान पूर्वक जप करके उस जप के विधि को आप समर्पित हो जाएंगे अपने आप उस कीर्तन विधि को, तो इसी जन्म में महाप्रभु स्वयं वादा कर रहे हैं। हमारी योग्यता नहीं है, अपनी योग्यता का बखान नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु की कृपा का बखान कर रहे हैं कि योग्यता ना होते हुए भी इस महामंत्र का जप एवं कीर्तन की विधि को जो समर्पित करता है वो इसी जीवन में महाप्रभु की असीम कृपा से कृष्ण प्रेम को तो प्राप्त करता ही है, और भगवत धाम को भी प्राप्त करता है, चिरंतन शाश्वत जीवन प्रेम का प्राप्त करता है। तो ये विशेष कृपा है। कितनी बार जप करते हुए याद आता है हमको बताओ? जप करते हुए खाली वो प्रसाद में क्या होगा यही याद आता है, आज फिस्ट में क्या होगा, गौर पूर्णिमा के जगन्नाथ मिश्रा वाले फिस्ट में क्या होगा, नंदोत्सव में क्या होगा। अच्छा है प्रसाद की याद कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर भी कुछ याद करने जैसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं, जैसे कृष्ण के चरित्र को राधा रानी का भाव परावर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है, वैसे ये चिंतन भी हमारे जीवन को पूरा परावर्तित कर सकता है। बदल सकता है पूरा जीवन। क्या थे जगह मधाई, क्या बन गए? हमारे महाराज उधर मधाई के समाधि के पास बैठे थे, अभी वो मधाई और जगाई थे, बाद में क्या बने? जगदानंद स्वामी और मधवानंद स्वामी बने। एक आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय संत बने वो। यहाँ तक कि लोगों ने, जिन्होंने उनका आतंक सहन कर लिया था, वो भी उनको पहले पत्थर मारते थे वो पुराने क्रोध के कारण, वो पत्थर को स्वीकार करते थे वो कि भाई मैंने इतना अपराध किया उनका, कोई बात नहीं, मारो पत्थर और मारो, और मारना चाहिए मुझे, इतना मैं पापी हूँ। फिर वो लोग ही इनका परिवर्तित भाव देखकर उनका वंदन पूजन करने लगे, दान पुण्य करने लगे, उनका चरण छूने लगे, इतना परिवर्तन हुआ। फिर मदाई जब माधवानंद गोस्वामी का देहांत हुआ तो उसकी समाधि बनाई गई, और वो समाधि अभी भी है। तो वहाँ पर हमारे गुरुजी परम पूज्य राधानाथ महाराज बैठकर ना, सब लोग गए, कथा वथा सब हो गई, और वहाँ बैठकर वो एकांत में कुछ आँख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं गया उनके पास, जब उठ ही रहे थे तो मैंने पूछा थोड़ा सा धाड़स करके, महाराज जी आप क्या प्रार्थना कर रहे थे, क्या चिंतन आपका, क्या मेडिटेशन क्या था? तो महाराज ने इतनी सुंदर बात कही है, सबको ना उस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि मधाई का भी उद्धार हो सकता है तो हमारा भी उद्धार होने की आशा है। दिस इज माई मेडिटेशन, ऐसा उन्होंने बोला कि मधाई जैसे एक दिन में इतना बड़ा पाप विश्व भर के लोग करने वाले, इतना बड़ा पाप करने वाले लोग एक दिन नहीं जिए, वो कई दिन जिए, बहुत सालों तक जिए वो आतंकवाद करते हुए। उनका भी अगर कृष्ण प्रेम प्राप्ति उनको हो सकती है, पापों से उद्धार हो सकता है, तो हमें भी कुछ स्कोप है। यह आशा हमें माधवानंद गोस्वामी की समाधि देता है, लेकिन वो आशा कहाँ से उत्पन्न हुई? महाप्रभु की कृपा से उत्पन्न हुई, नित्यानंद प्रभु के असीम कृपा से उत्पन्न हुई। क्योंकि ये जो भगवान की कृपा है ना, देखो भगवान के अंदर अनंत गुण है ना, 64 कलाएं हैं, 16 गुण हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, ऐसे पूरा मिलकर भगवान के व्यक्तित्व बनता है। और उनके अंदर भी करुणा है, अनंत करुणा है उनके अंदर, लेकिन वो लीला के लिए जब ही दो हो जाते हैं तो विशेष रूप से उनकी करुणा जो है वो राधा रानी के व्यक्तित्व में प्रस्थापित हो जाती है। लेकिन जब वो करुणा, अनंत करुणा भगवान से निकलकर राधा रानी के व्यक्तित्व में प्रस्थापित हो जाती है तो वो केवल उतनी रहती नहीं है, राधा रानी के होने से वो अनंत गुणित हो जाती है। द मर्सी एंड करुणा ऑफ कृष्णा गेट्स मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स इन द पर्सनैलिटी ऑफ राधा रानी। इतनी बार वो गुणित हो जाती है कि कृष्ण भी जब राधा रानी को देखते हैं तो इस करुणा को देख के अचंभित हो जाते हैं, उनकी करुणा है वो। लेकिन जब राधा रानी के व्यक्तित्व से प्रकट होती है अनंत बारा गुणित, तो वो स्वयं भी विभोर हो जाते देखकर उसको। और प्रकट कैसे होती है? जिसको कृष्ण ने शाप दिया है अश्वत्थामा को, इतना भयंकर शाप दिया था, पता है ना आपको, तुम्हारे सर पे जो जख्म होगी वो कभी भी सूखेगी नहीं, कभी हील नहीं होगी, उसमें इतना भयंकर दर्द होगा कि तुम दर्द को सहन नहीं कर पाओगे, मरना चाहोगे लेकिन मर भी नहीं पाओगे, ऐसा भयंकर वरदान साफ दिए उनको। एक तो जख्म खून से बहती रहेगी, कभी भी सूखेगी नहीं वो, एक और दर्द हमेशा मुंह पे रक्त आता रहेगा, और दर्द इतना होगा कि तुम मृत्यु चाहोगे, लेकिन मेरा शाप है कि तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, तो तुम तड़पते रहोगे अनंत काल तक, जाओ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। जो भक्त का अपराध करता है उसकी ऐसी अवस्था होती है। उस अश्वत्थामा को भी राधा रानी ने क्षमा कर दी, उसका जख्म सूख गया, उसका दर्द मिट गया, वो पूर्ण पाप शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। केवल पवित्र नहीं हुआ, श्री कृष्ण प्रेम भक्ति को उसने प्राप्त किया, राधा रानी का वरदान प्राप्त किया, अभी तुम यहीं रहो, मेरे पिपासा बन के रक्षा करो और साधुओं की सेवा करो, हम लोग यहाँ पर आके नित्य करते हैं दोनों, उस कुंड की वन की रक्षा करो आप। अभी भी अश्वत्थामा वहाँ निवास करते हैं, पिपासा वन, इसको लोकल भाषा में पिसाया कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण के शाप को लांगने की शक्ति केवल एक ही व्यक्ति में है। ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं थी, शिव जी की हिम्मत नहीं थी, बोले जाओ माफ करो हमको, हमारे पास मत आओ, ये हमारा काम नहीं, हमारे मालिक ने आपको शाप दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। राधा रानी का हौसला दिया, जाके वहाँ ट्राई करो, और राधा रानी पूरे इत्मीनान से कृष्ण के दिए हुए शाप को काट कर उसको प्रेम भक्ति का वरदान किया, और कृष्ण ने आकर झगड़ा नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जानते हो क्या क्या किया था उसने, नहीं, राधा रानी का अधिकार है वो, उनकी करुणा इतनी प्रधान है कि कृष्ण भी नतमस्तक हो जाते हैं उनकी करुणा के सामने। और उसी करुणा को चाहने के लिए उनके चरणों में गिर जाते हैं। उसी करुणा को जो उनकी करुणा है उनमें स्थित होकर जो इतनी बारह गुणित हो जाती है उसको प्राप्त करने के लिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, करुणा प्राप्त करने के लिए कृष्ण नतमस्तक हो जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चरणों में गिरते हैं, आंसू बहाते हैं, चरण धोते हैं, रज में लोटपोट हो जाते हैं, कृपा करो राधे कृपा करो। ये गौरांग महाप्रभु है, ये जो करुणा की बात हम कर रहे हैं ना वैसी करुणा गौरांग महाप्रभु में है कि वो अश्वत्थामा जैसे अनंत पापियों को एक साथ क्षमा कर सकती हैं। और उनकी कृपा का एक ही वरदान यही है कि वो क्षमा केवल नहीं करती है साथ में कृष्ण प्रेम भी देती है, कृष्ण भक्ति भी देती है, अपना लेती है, वो अपने चरणों में रखती है। उनके चरणों में आने वाला व्यक्ति जो है उसे कोई भय नहीं है। उसी प्रकार से क्योंकि उनके हृदय में राधा रानी है, गौरांग महाप्रभु के चरणों में आश्रय लिए व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। इसलिए गौरांगा तुमी मोरे दया न छाड़ी हो, अपना कोरिया रंगा चरण राखी हो। हमें चरणों में रखो भगवान, कभी ठुकरा मत दो, अपना बना लो, अपना रखो, अपना कोरिया रंगा अपना बना लो, हम आपके बनना चाहते हैं, आप हमें अपना बना लो, अपने पास रखो, ठुकराओ मत। हम पापी हैं, पतित हैं, 50 बार हम गिरने वाले हैं, फिर भी आप हमको नहीं त्यागना। और वो नहीं त्यागेंगे क्योंकि अनंत करुणा वाले हैं, वो दोष वोष देखते नहीं हैं, केवल इच्छा देखते हैं। किसके अंदर ये प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है उसको उतने ही योग्यता में दे देते हैं उसको। प्रॉब्लम एक ही है कि हम चाहते नहीं, अब तक उतनी हमारे अंदर वो तीव्र जिजीविषा नहीं है कि हमें चाहिए। आज के दिन मांगो आप, आज का वो दिन है जिस दिन में जो उपवास करता है, जो भगवान नाम का जप करता है और जो गौरांग महाप्रभु का दर्शन करता है और जो गंगा में स्नान करता है, इसको इसी जीवन में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ये आज के दिन का महात्म्य है। अभी प्रॉब्लम इसमें है कि गंगा जी कहाँ है ना, गौरांग महाप्रभु सामने है, हरिनाम भी है, व्रत भी आप कर सकते हो, तो मन में गंगा में स्नान करो नवद्वीप में। जो कोई गए हुए हैं उनको याद आती होगी, भगवान की जैसे मुझे याद आ रही है ठीक से अच्छी तरह से, हर जगह की गंगा याद आ रही है, जलांगी याद आ रही है, गंगा याद आ रही है, और अलग अलग जगह पर संगम याद आ रहा है। आप जो याद आ रहा है अपने इस्कॉन मंदिर के सामने जो गंगा बहती है उसमें आप डुबकी लगाओ, मन में अनंत बार डुबकी लगाओ, अच्छी तरह से व्रत करो, भगवान नाम लो, रो रो के पुकारो कि मुझे कृष्ण प्रेम दो, मुझे नहीं आना वहाँ पर, यहाँ पर मुझे नहीं आना, यहाँ पर काम वासनाओं के चक्र में फंसने के लिए, बार बार स्त्री पुरुष के चक्र में फंसने के लिए, बार बार अनंत काम वासनाओं में, अनंत इच्छाओं में फंसने के लिए मुझे नहीं आना है, एक ही बार ये खरा किस्सा खत्म कर दो, जरूर देंगे वो वरदान। हमारे मांगने में कमी है, उनके देने में कमी नहीं है। मांगने वाले में कंजूसी है, मांगने वाले में कमजोरी है, देने वाले में नहीं है। तो जब हमारी कमजोरी समाप्त हो जाएगी और मांगने में हम लोग कुशल हो जाएंगे, मांगने में सक्षम हो जाएंगे, जोरदार हो जाएंगे, तो कृष्ण प्रेम कहीं दूर नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।